देखिए भाई आगे सबक, व इदा قال الرجل لامرأته وهو صحيح اذا جاء رأس الشهر او اذا دخلت الدار او اذا صلى فلان الظهر او اذا دخل فلان الدار فانت طالق فكانت هذه الاشياء والزوج مريض لم ترث وان كان القول في المرض ورثت الا في قوله اذا دخلت الدار. गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि इस्तिस्ना जो है वो तकल्लुम बिल बाकी का नाम है, लिहाजा कुल में से बाज का इस्तिस्ना तो सही है लेकिन कुल में से कुल का इस्तिस्ना सही नहीं है भाई। और फिर उसके बाद बाबू तलाकिल मरीज हमने शुरू किया था कि कोई शख्स मरजुल मौत के अंदर अगर अपनी बीवी को तलाके बाइन दे देता है या तीन तलाकें दे देता है, तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि मरजुल मौत के अंदर बीवी का हक खावंद के माल से मुतालिक हो जाता है। खावंद मरजुल मौत में मुबतला है, मरने वाला है, तो अब वारिसों का हक उसके माल के साथ मुतालिक हो गया। लिहाजा इस हालत में अगर खावंद बीवी को तीन तलाकें देता है या तलाके बाइन देता है, मालूम हुआ उसका भागने का इरादा है, यानी कि बीवी को नुकसान पहुंचाने का इरादा है कि इसको मेरे माल में से कुछ भी ना मिले, तो ये औरत इमराए फार हुई भाई, इमराए फार। और इमराए फार या यूं कहें जौजाए फार जो है वो वारिसा बनती है इद्दत के दौरान। तो वो शख्स तलाके बाइन देकर या तीन तलाके देकर फौरन महरूम करना चाहता था, लेकिन बिकद्रिल इम्कान उस औरत को वारिसा बनाया जाएगा, क्योंकि दिलों में बदगुमानी आती है कि अगर आपने तलाक देनी ही थी तो आप सेहत की हालत में देते, अब जब आप मरने वाले हैं, औरत आपकी वारिसा बनने वाली है, तो अब आप तलाक देकर उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। तो इस बदगुमानी की वजह से शरीयत ने बीवी का हक बातिल करने का जो इरादा उसने किया है उसको मुअख्खर कर दिया इद्दत तक। तो इद्दत के अंदर अगर खावंद का इंतकाल हो गया तो वो वारिसा बनेगी, और अगर इद्दत के बाद इंतकाल हुआ खावंद का तो फिर वो वारिसा नहीं बनेगी भाई। फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया था कि अगर औरत ने खुद तलाक का मुतालबा किया तो फिर इस सूरत के अंदर वो इद्दत के अंदर भी अगर खावन का इंतकाल हो जाए फिर भी वारिसा नहीं बनेगी, इसलिए क्योंकि खुद जब उसने तलाक का मुतालबा किया है मालूम हुआ वो अपना हक बातिल करने पर राजी हो चुकी है। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि मरजुल मौत में खावन ने बीवी को सबके सामने कहा कि तुझे मैंने सेहत में तीन तलाकें दी थीं और तेरी इद्दत भी गुजर गई थी और औरत भी उसकी तस्दीक कर लेती है, फिर खावंद इद्दत के अंदर अंदर उसके लिए खावंद उसके लिए किसी दैन का इकरार कर लेता है या उसके लिए वसीयत कर देता है। मैंने आपको बतलाया था कि वारिस के लिए ना वसीयत जायज है और ना इकरार दैन जायज है। वजह यह कि दिलों में बदगुमानी आती है कि शायद ये शख्स इस वारिस को ज्यादा माल देना चाहता है, बाकियों का नुकसान करना चाहता है, तो लिहाजा इसलिए वारिस के लिए ना इकरार जायज है और ना वसीयत जायज है। तो अब सूरत मसला ये कि मरजुल मौत के अंदर ही उस शख्स ने कहा बीवी से कि मैंने तुझे तीन तलाकें भी दी थी और तेरी इद्दत भी गुजर गई थी, तो औरत भी तस्दीक कर देती है और अब खावंद उसके लिए इकरार या वसीयत करता है, दैन का इकरार करता है या वसीयत करता है। तो इस सूरत में इमाम साहब फरमाते हैं कि यहां दिलों में बदगुमानी आती है कि शायद दोनों ने आपस में मिलकर गठजोड़ कर लिया है, खावंद उसे ज्यादा फायदा देना चाहता है और बाकी वारिसों का नुकसान करना चाहता है, तो फिर इस सूरत में अगर खावंद का इकरार या वसीयत वो मीरास से ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा नहीं दिया जाएगा भाई। तो जो अकल होगा दोनों में से वो दिया जाएगा, मीरास और दूसरी तरफ जो इकरार या वसीयत की है, इन दोनों में से जो अकल होगा वो बीवी को दिया जाएगा भाई। और जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि ये औरत इस शख्स से अजनबिया हो चुकी है क्योंकि इद्दत भी गुजर चुकी है इसकी, लिहाजा इसलिए इसके लिए इकरार भी सही है या वसीयत करे तो वो वसीयत भी सही है, औरत को सारा इकरार या सारी वसीयत मिलेगी। वजह ये कहते हैं कि निकाह पूरे तौर पर टूट चुका है, इसीलिए तो इस बीवी की बहन के साथ भी खावन का निकाह जायज है, हालांकि वैसे तो बीवी की बहन के साथ निकाह जायज नहीं क्योंकि क्योंकि मना किया गया है दो बहनों को एक निकाह में जमा करने से, लेकिन इस खावन के लिए बीवी की बहन से निकाह भी जायज हो चुका है और नीस ये इस बीवी को ज़कात भी दे सकता है, हालांकि निकाह मौजूद हो तो खावंद या बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, और नीस खावंद और बीवी की गवाही एक दूसरे के हक में कबूल नहीं की जाती, लेकिन यहां पर यह औरत अजनबिया हो चुकी है लिहाजा खावंद इसके हक में गवाही भी दे सकता है भाई। तो ये सब चीजें दलालत करती हैं कि इन दोनों का निकाह पूरे तौर पर खत्म हो चुका है। जब पूरे तौर पर खत्म हो चुका है या औरत अजनबिया बन चुकी है तो इसके लिए इकरार भी जायज और वसीयत भी जायज है, तो वही इस औरत को मिलेगा चाहे जितना ज्यादा भी हो। जबकि इसके मुकाबले में अगर खावंद मरजुल मौत में मुबतला है और औरत तीन तलाकों का मुतालबा करती है और खावंद उसको तीन तलाकें दे देता है, तो इस सूरत में आपने पढ़ा है कि औरत के अपने मुतालबे पर जब खावंद उसको मरजुल मौत में तलाक दे तो औरत वारिसा नहीं बनती, चाहे इद्दत के अंदर ही खावंद का क्यों ना इंतकाल हो जाए फिर भी औरत वारिसा नहीं बनती क्योंकि वो खुद तलाक का मुतालबा कर रही है, वो खुद अपना हक बातिल करने पर राजी है भाई। लेकिन यहां पर सूरत यह है कि खावन ने बीवी के मुतालबे पर उसको मरजुल मौत में तीन तलाकें भी दे दी और फिर खावन ने उसके लिए वसीयत या इकरार भी कर दिया भाई, तो यहां पर औरत इद्दत के अंदर है और इद्दत के अंदर खावन उसके लिए वसीयत या इकरार कर रहा है तो दिलों में बदगुमानी आती है कि शायद मियां बीवी ने मिलकर गठजोड़ किया है, बीवी ने कहा कि मैं तीन तलाकों का मुतालबा करूंगी तुम मुझे तीन तलाकें दे देना और इस तरह तुम्हारे लिए वसीयत या इकरार का दरवाजा खुल जाएगा, फिर तुम मेरे लिए वसीयत या इकरार कर देना, तो दिलों में बदगुमानी आती है, तो लिहाजा इस तोहमत की वजह से अब औरत को अकल मिलेगा। मीरास या इसके मुकाबले में जो वसीयत या इकरार किया है खावन, इनमें से जो अकल होगा वो औरत को मिलेगा। और इस मसले के अंदर साहिबैन भी इमाम साहिब के साथ हैं, साहिबैन भी फरमाते हैं इस सूरत के अंदर अकल ही मिलेगा औरत को। वजह यह कि खावन ने जब इकरार या वसीयत की है तो औरत की इद्दत मौजूद है और यह इद्दत जो है यह सबब तोहमत है भाई। देखो देखो शरीयत ने वारिसों के लिए इकरार से भी मना किया है और वसीयत से भी मना किया है, वजह यह कि वारिसों का हक अल्लाह ताला ने मुकरर फरमा दिया, हर एक के हिस्से मुकरर फरमा दिए, जब अल्लाह ने उनके हिस्से मुकरर फरमा दिए हैं उनको एक माल की एक मुतय्यन मिकदार मिलनी ही मिलनी है, तो फिर उसके बाद मूरिस का अपनी तरफ से किसी वारिस के लिए इकरार करना या वसीयत करना मालूम हुआ यह इसको फायदा पहुंचाना चाहता है, मालूम हुआ मोरिस इस वारिस को फायदा पहुंचाना चाहता है और बाकी वारिसों का नुकसान करना चाहता है, तो शरीयत ने यह रास्ता ही बंद कर दिया कि मोरिस वारिस के लिए ना इकरार कर सकता है और ना वसीयत कर सकता है तोहमत की वजह से कि यह शख्स कहीं बदनीयती ना कर रहा हो। लेकिन तोहमत तो एक अमरे बातनी है भाई, इसका तो पता नहीं चल सकता भाई, ये तो दिल की बात है कि वो बदनीयती कर रहा है या बदनीयती नहीं कर रहा, तो लिहाजा जब तोहमत यानी इस हुक्म की इल्लत का पता नहीं चल सकता तो फिर हुक्म का मदार सबब पर हो जाता है, यानी यहां फिर हुक्म का मदार दलील पर हो जाएगा यानी दलील तोहमत पर भाई। तोहमत तो अमरे बात नहीं है, उसका पता नहीं चल सकता, लिहाजा हुक्म का मदार दलील तोहमत पर हो जाएगा, और दलील तोहमत क्या है? निकाह और करीबी रिश्तेदारी। निकाह मौजूद हो तो वारिस बनता है, करीबी रिश्तेदारी हो तो वारिस बनता है, और वारिस के लिए इकरार या वसीयत करेगा तो यह महल्ले तोहमत है। यह क्या है? महल्ले तोहमत। और तोहमत का तो पता नहीं चल सकता, जब तोहमत का पता नहीं चल सकता तो लिहाजा तोहमत की जो दलील है यानी निकाह और करीबी रिश्तेदारी उस पर हुक्म का मदार हो जाएगा। तो जहां निकाह या करीबी रिश्तेदारी मौजूद है तो तोहमत मौजूद है। तोहमत का तो पता नहीं, लेकिन दलील तोहमत तो मौजूद है, यही निकाह और करीबी रिश्तेदारी तो दलील तोहमत है भाई। तो जब दलील तोहमत मौजूद है तो यूं समझो तोहमत मौजूद है। ये इसी तरह है जैसे कोई शख्स सफर में जाता है, तो चूंकि सफर के अंदर मशक्कत होती है, इंसान तकलीफ में होता है, लिहाजा शरीयत ने अहकाम के अंदर नरमी कर दी कि अगर सफर में रोजा नहीं रख सकते तो फिर बाद में भी रखने की इजाजत दे दी। और इसी तरह अगर सफर के अंदर चार रकात वाली नमाज है तो शरीयत ने हुक्म दिया दो रकात पढ़ लो। बात समझ में आ गई है, शरीयत ने आसानी फरमा दी। किस वजह से? मशक्कत की वजह से। लेकिन मशक्कत तो एक अमर बातिनी है, उसका तो पता नहीं चल सकता कि किसको कितनी मशक्कत हुई है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनको अल्लाह ने ऐसा मजबूत बदन दिया होता है कि कई कई दिन सफर करके भी उनको थकन और मशक्कत का एहसास ही नहीं होता, और बाज ऐसे नाजुक होते हैं कि थोड़ा सा सफर करते हैं तो वो बड़ी मशक्कत में मुबतला हो जाते हैं। तो चूंकि इस हुक्म का मजीद जो शरीयत ने आसानी की, इसकी इल्लत मशक्कत है, लेकिन मशक्कत का तो पता नहीं चल सकता, वो तो एक अमरे बातिनी है। तो फिर उस मशक्कत की जो दलील है यानी सफर, उसी पर हुक्म का मदार कर दिया कि बस तीन दिन का सफर है तो समझो मशक्कत मौजूद है, लिहाजा चार रकात के बजाय दो रकात पढ़ लो, और रोजे अगर इस वक्त नहीं रख सकते सफर में तो फिर बाद में रख लेना। तो मशक्कत का पता नहीं चल सकता था, तो हुक्म का मदार किस पर कर दिया? दलील मशक्कत यानी सफर पर। तो यहां पर भी शरीयत ने मना किया है कि मोरिस जो है वारिस के लिए इकरार या वसीयत नहीं कर सकता तोहमत की वजह से, क्योंकि दिलों में बदगुमानी आती है। लेकिन तोहमत तो एक अमरे बातनी है, पता नहीं ये शख्स वाकई बदनीयती कर रहा है या बदनीयती नहीं कर रहा, तो फिर लिहाजा जब तोहमत का पता नहीं चल सकता तो हुक्म का मदार दलील तोहमत पर हो जाएगा। और दलील तोहमत क्या है? निकाह या करीबी रिश्तेदार होना। तो जब निकाह मौजूद हो या करीबी रिश्तेदार हो तो यह दलील तोहमत है, और जब दलील तोहमत मौजूद है तो मालूम है तोहमत मौजूद है, और जब तोहमत मौजूद है तो लिहाजा हुक्म आ जाएगा, आप इकरार भी नहीं कर सकते, आप वसीयत भी नहीं कर सकते। तो मसला चल रहा था कि खामंद ने मरजुल मौत में बीवी के मुतालबे पर उसको तीन तलाकें दी हैं, और फिर खामंद इद्दत के अंदर अंदर उसके लिए इकरार या वसीयत भी कर रहा है। तो इद्दत मौजूद है भाई, और इद्दत के अंदर आपने पढ़ लिया कि निकाह के बहुत से असरात बाकी होते हैं। इद्दत का नफाका भी खावंद को देना पड़ता है, इद्दत के अंदर रिहाइश भी खावंद के जिम्मे है, इद्दत के दौरान खावंद उसे घर से निकलने से भी मना कर सकता है, इद्दत के दौरान जो है अगर इसमें औलाद पैदा हुई तो वो भी खावंद ही की शुमार होगी वगैरह, और नीस इद्दत के दौरान औरत आगे भी कहीं निकाह नहीं कर सकती। तो देखो इद्दत के अंदर निकाह के बहुत से असरात बाकी हैं, इन यूं समझो बाज एतबार से अभी भी निकाह बाकी है। और निकाह तो था दलील तोहमत, निकाह की वजह से तो इकरार या वसीयत जायज नहीं थी। तो यहां इद्दत के अंदर भी निकाह के असरात मौजूद हैं, तो दलील तोहमत मौजूद है, और जब दलील तोहमत मौजूद है तो लिहाजा अब बीवी को मीरास और वसीयत या इकरार में से जो अकल है वो दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि तोहमत किस सूरत में आती है? ज्यादती की सूरत में। अगर वसीयत या इकरार मीरास से ज्यादा किया है, वसीयत या इकरार मीरास से ज्यादा किया है तो फिर उसमें तोहमत है। अगर वसीयत या इकरार मीरास के बराबर है या उससे कम है तो उसमें तोहमत नहीं है। बात समझ में आ गई। अगर खावंद ने बीवी के मुतालिबे पर मरजुल मौत में उसको तीन तलाकें दे दी हैं और उसके लिए वो वसीयत या इकरार करना चाहता है तो इद्दत के बाद इकरार करता या वसीयत करता, लेकिन इद्दत मौजूद है, गोया मिन वजह निकाह मौजूद है, और उसके लिए क्या करना चाहता है? इकरार या वसीयत करना चाहता है, तो दिलों में बदगुमानी आती है। तो दलील तोहमत मौजूद है, यानी बाज एतबार से निकाह मौजूद है, और जब दलील तोहमत मौजूद है तो फिर चाहे तोहमत हो या ना हो यूं समझा जाएगा तोहमत मौजूद है, और जब तोहमत मौजूद है तो लिहाजा बीवी को अकल ही मिलेगा। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया कि बाज और मवाके भी उनका भी वही हुक्म है जो मरजुल मौत वाला हुक्म है, यानी वो चीजें जिनके अंदर हलाकत गालिब हो तो उनका हुक्म भी मरजुल मौत वाला है, लिहाजा उसके अंदर अगर खावन बीवी को तीन तलाकें देता है या तलाकें बाइन देता है तो इद्दत के अंदर अगर खावन मर जाए तो फिर औरत वारिसा बनेगी, अगर इद्दत के बाद मरे फिर औरत वारिसा नहीं बनेगी। तो मसलन एक शख्स तलवार के साथ किसी के साथ मुकाबला करता है, अब इसके अंदर तो हलाकत गालिब है, लिहाजा ये भी मरजुल मौत के हुक्म में है। या इसी तरह किसी को किसास को कत्ल करने के लिए आगे कर दिया गया, मैदान में ले आया अब उसे कत्ल करना है तो उसे आगे कर दिया गया, या किसी शख्स को रजम करना है और उसको आगे कर दिया गया और इस वक्त के अंदर वो अपनी बीवी को तीन तलाकें देता है, तो ये हालत इसमें तो हलाकत गालिब है, तो ये मरजुल मौत के हुक्म में है। और मरजुल मौत के अंदर अगर कोई शख्स बीवी को तीन तलाकें दे तो इद्दत तक औरत वारिसा रहेगी। भाई बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ أَوْ إِذَا صَلَّى فُلَانٌ الظُّهْرَ أَوْ إِذَا دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَالزَّوْجُ مَرِيضٌ لَمْ تَرِثْ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ إِلَّا فِي قَوْلِهِ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ। साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि इस मसले की कई सूरतें हैं भाई, और इसमें खावन जो है अपनी बीवी की तलाक को मुअल्लक करता है किसी चीज पर, तो या तो खावन बीवी की तलाक को मुअल्लक करेगा किसी वक्त के साथ कि महीने का आगाज हो जाए तो तुझे तलाक है, या महीने की फला तारीख आ जाए तो तुझे तलाक है, या तीन महीने गुजर जाएं तो तुझे तलाक है। तो एक सूरत यह है कि खावन बीवी की तलाक को मुअल्लक करता है किसी वक्त के साथ। दूसरी सूरत यह है कि खावन तलाक को मुअल्लक करता है फेल के साथ, और यह फेल किसी अजनबी का भी हो सकता है, खावंद का अपना फेल भी हो सकता है, और बीवी का फेल भी हो सकता है। तो कुल चार सूरतें हो जाएंगी यहां पर। एक सूरत यह कि तलाक को मुअल्लक किया है वक्त के साथ, दूसरी सूरत यह है तलाक को मुअल्लक किया है किसी अजनबी आदमी के फेल के साथ, किसी गैर के फेल के साथ, और तीसरी सूरत यह है कि तलाक को मुअल्लक किया है खावंद ने अपने किसी फेल के साथ, और चौथी सूरत यह है कि खावन तलाक को मुअल्लक कर देता है बीवी के फेल के साथ कि अगर तूने ऐसा किया तो तुझे तलाक है। तवज्जो है। फिर इसके अंदर ये तफसील याद रखो, ये जो फेल होगा या तो ये ऐसा फेल होगा कि उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, या ऐसा फेल होगा कि उसके सिवा चारा ही नहीं, वो करना ही पड़ेगा। जैसे खाना खाना, खावन बीवी से कहता है अगर तूने खाना खाया तो तुझे तलाक है। अब खाना खाना तो जरूरी है अपनी बका के लिए, उसके बगैर तो गुजारा नहीं। तो ये एक सूरत है। या खावन किसी ऐसे फेल के साथ तलाक को मुअल्लक करता है जिसके सिवा भी चारा है, उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। मसलन बीवी से कहता है अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है। तो अब देखो, एक मुअय्यन घर के अंदर जाना, इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, बीवी उस घर में ना जाए, इत्मीनान से जिंदगी गुजारे, कोई हाजत नहीं उस घर में जाने की। तो मालूम हुआ कितनी किस्म के फेल हो सकते हैं, दो किस्म के। वो फेल जिनके साथ खावन तलाक को मुअल्लक कर रहा है, या तो उसके बगैर चारा होगा यानी उसके बगैर भी गुजारा हो सकेगा, या उसके सिवा चारा ही नहीं होगा। मसलन क्या कहा कि अगर तूने खाना खाया तो तुझे तलाक है, या इसी तरह कहता है अगर तूने जोहर की नमाज पढ़ी तो तुझे तलाक है। अब नमाज के बगैर तो गुजारा नहीं, नमाज तो फर्ज है हर मोमिन पर। तो लिहाजा ये अफाल दो किस्म के हो सकते हैं, बाज़ वो अफाल जिनके बगैर गुजारा हो सकता है, बाज़ वो अफाल जिनके सिवा गुजारा ही नहीं, उनके बगैर चारा ही नहीं है भाई। फिर उसके बाद इसमें मजीद तफसील ये याद रखो कि खावंद ने ये जो तालीक की है, तालीक की है और फिर ये जो शर्त आगे फिर पाई गई, वो फेल पाया गया या वो वाला वक्त आ गया, तालीक और शर्त दोनों मरजुल मौत में होंगे, या तालीक तो सेहत की हालत में की थी उस वक्त खावन ठीक ठाक था और बाद में मरजुल मौत में मुबतला हुआ और फिर वो शर्त पाई गई, तो तालीक और शर्त या तो दोनों किस में होंगे, मरजुल मौत में, या तालीक होगी सेहत में और शर्त पाई जाएगी मरजुल मौत में। तो इन सब की तफसील साहिबे हिदाया बयान करेंगे भाई। तो इसमें याद रखना एक बात भाई, एक तो ये याद रखना कि ये खावंद जिस तलाक को मुअल्लक कर रहा है वो तलाक़े बाइन होनी चाहिए, वो तलाक़े बाइन होनी चाहिए, क्योंकि तलाक़े रजई के अंदर तो इद्दत के अंदर औरत बिल इत्तेफाक वारिसा बनती है भाई, तो तलाक़े बाइन होनी चाहिए या तीन तलाक़ें हों भाई। और नीज ये भी याद रखना कि ये जो शर्त है इस शर्त ने तो होना ही मरजुल मौत में है, बात सिर्फ तालीक की रह जाती है कि तालीक भी मरजुल मौत में है या तालीक मरजुल मौत से पहले थी यानी सेहत की हालत में। तो तलाक कौन सी होगी इन तमाम मसाइल के अंदर? तलाक़े बाइन होगी या तीन तलाकें होंगी। और नीज शर्त भी हमेशा कब पाई जाएगी? मरजुल मौत के अंदर पाई जाएगी, क्योंकि मरजुल मौत के मसाइल चल रहे हैं। और जबकि तालीक जो है उसमें इहतिमाल है, हो सकता है तालीक भी मरजुल मौत में की हो और हो सकता है तालीक जो है वो सेहत की हालत में की हो। मुख्तसरन समझ लें भाई, साहिब हिदायत और मजीद अच्छे अल्फाज में जिक्र करेंगे, खुलासा समझ लें कलाम का भाई। साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे अगर खावन ने तलाक को मुअल्लक किया है किसी वक्त के साथ या खावन ने तलाक को मुअल्लक किया है किसी अजनबी के फेल के साथ, तो जैसे वक्त किसी के इख्तियार में नहीं, उसने आना ही आना है, और तो इसी तरह अजनबी का फेल भी इंसान के इख्तियार में नहीं होता, अजनबी जो भी फेल करता है अपनी मर्जी से करता है। तो ये दो चीजें अगर पाई गई, अगर तलाक को किससे मुअल्लक किया, वक्त के साथ या अजनबी के फेल के साथ, तो अगर तालीक भी मरजुल मौत में थी और शर्त भी मरजुल मौत में पाई गई तो फिर औरत इद्दत के दौरान वारिसा बनेगी। मसलन खावन मरजुल मौत में मुबतला है और बीबी से कहता है अगले महीने की यकम तारीख को तुम्हें तलाक है, तो ये तालीक किसमें की है? मरजुल मौत में। और फिर शर्त भी कब आई? वो तारीख आ गई और खावन मरजुल मौत में मुबतला है, तो तालीक भी मरजुल मौत में और शर्त भी मरजुल मौत में। या खावन ने बीवी से कहा अगर फुला शख्स ने ये वाला फेल किया तो तुम्हें तलाक है, चाहे वो फेल ऐसा हो कि उसके बगैर गुजारा हो सके, चाहे ऐसा फेल हो जिसके बगैर गुजारा न हो सके, दोनों का एक ही हुक्म है यहां अजनबी के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि अजनबी पर आपका इख्तियार नहीं है, वो अपनी मर्जी से हर फेल करता है, तो उसका फेल चाहे ऐसा हो जिसके सिवा चारा ना हो या ऐसा फेल हो जिसके सिवा भी चारा हो। मसलन खावन बीवी से कहता है अगर जैद ने जोहर की नमाज पढ़ी तो तुम्हें तलाक है, या अगर जैद ने खाना खाया तो तुम्हें तलाक है। देखो ये ऐसा फेल जिक्र किया अजनबी का जिसके सिवा चारा नहीं, नमाज तो उसने पढ़नी ही पढ़नी है, खाना तो उसने खाना ही खाना है भाई, या अजनबी का ऐसा फेल जिक्र कर दिया जिसके सिवा भी चारा है कि अगर जैद उस घर में गया तो तुम्हें तलाक है। देखो उस घर में जाए बगैर भी जैद का गुजारा हो सकता है, लेकिन बहरहाल दोनों का एक ही हुक्म है, जब अजनबी का फेल जिक्र किया जाए तो उसमें चाहे उस फेल के बगैर चारा हो चाहे उसके बगैर चारा ना हो, दोनों का एक ही हुक्म है। तो खावन ने बीवी की तलाक को मुअल्लक किया है वक्त के साथ या अजनबी के फेल के साथ, चाहे वो फेल ऐसा हो जिसके बगैर गुजारा हो सके चाहे उसके बगैर गुजारा ना हो सके, दोनों का एक ही हुक्म है। तो इन दोनों सूरतों के अंदर अगर तालीक और शर्त दोनों मरजुल मौत में पाए गए तो फिर इस सूरत के अंदर औरत वारिसा बनेगी। खावन ने तालीक भी कब की है? मरजुल मौत में, कि अगले महीने की यकम तारीख आएगी तो तुम्हें तलाक है, या जैद उस घर के अंदर गया तो तुम्हें तलाक है, या जैद ने जोहर की नमाज पढ़ी या खाना खाया तो तुम्हें तलाक है। तो यह तालीक उसने किसमें की है? मरजुल मौत में। और फिर वो वाला वक्त भी आया तो खावन मरजुल मौत में है, या जैद ने वो फेल किया तो खावन मरजुल मौत में है, तो तालीक और शर्त दोनों मरजुल मौत में पाए गए, तो फिर इस सूरत के अंदर औरत वारिसा बनेगी, इसलिए क्योंकि कस्दे फिरार पाया गया है, फिरार का इरादा पाया गया है, क्योंकि खावन तालीक मरजुल मौत में कर रहा है भाई। अगर आपने बीवी को तलाक वगैरह देनी ही थी तो फिर आप सेहत की हालत में तलाक देते या तालीक करते, लेकिन अब जब आप मरजुल मौत में मुबतला हैं और बीवी का हक आपके माल के साथ वाबस्ता हो चुका है, अब आप बीवी की तलाक की तालीक कर रहे हैं, मालूम हुआ आप फिरार चाहते हैं, आप बीवी को वरासत से महरूम करना चाहते हैं, उसे नुकसान देना चाहते हैं, लिहाजा इस सूरत के अंदर औरत वारिसा बनेगी अगर इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हुआ। अगर इद्दत के बाद इंतकाल हुआ फिर वारिसा नहीं बनेगी। यह किसका हुक्म था? जब वक्त के साथ मुअल्लक किया हो या अजनबी के फेल के साथ, और दोनों मरजुल मौत में है, तालीक भी मरजुल मौत में और शर्त भी मरजुल मौत में। और अगर तालीक पाई गई सेहत के अंदर, खावन ने सेहत की हालत में कहा था बीवी को कि अगले महीने की यकम तारीख को तुम्हें तलाक है, या खावन ने सेहत की हालत में अजनबी के फेल के साथ बीवी की तलाक को मुअल्लक किया था, तो तालीक हुई सेहत में और वो शर्त पाई गई मरजुल मौत में, जब यकम तारीख आई तो खावंद मरजुल मौत में मुबतला हो चुका है, या जैद ने वो फेल किया तो खावंद मरजुल मौत में मुबतला हो चुका है, तो फिर इस सूरत के अंदर औरत वारिसा नहीं बनेगी। इसलिए क्योंकि कस्दे फिरार नहीं पाया गया, खावंद ने तो सेहत की हालत में तालीक की थी, उसे क्या पता था चंद दिन के बाद मैं मरजुल मौत में गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो यहां कस्दे फिरार नहीं। तवज्जो है, तो दारो मदार किस पर हो गया? कस्दे फिरार पर। अगर खावंद का फिरार का इरादा है तो फिर औरत वारिसा बनेगी, अगर खावंद का फिरार का इरादा नहीं तो फिर औरत वारिसा नहीं बनेगी। और तालीक और शर्त दोनों जब मरजुल मौत में है, मालूम हो वो फिरार चाहता है, मरजुल मौत में तालीक कर रहा है, और अगर सेहत में तालीक की है तो मरजुल मौत में तो सिर्फ शर्त पाई गई है, मरजुल मौत में तो खावंद ने कुछ भी नहीं किया भाई, लिहाजा कस्दे फिरार नहीं पाया गया। जब तालीक कब हो? सेहत में, और शर्त कब हो? मरजुल मौत में, तो फिर इस सूरत में औरत वारिसा नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई। दूसरी सूरत कि खावन ने औरत की तलाक को मुअल्लक किया है अपने फेल के साथ, अपने फेल के साथ, चाहे यह फेल ऐसा हो जिसके बगैर गुजारा हो सके, या चाहे ऐसा फेल हो कि जिसके बगैर गुजारा ना हो सके, दोनों का एक ही हुक्म है। और नीस यहां पर खावन ने तालीक भी मरजुल मौत में की और शर्त भी मरजुल मौत में पाई गई, या तालीक तो सेहत में की है लेकिन शर्त मरजुल मौत में पाई गई, तो इन तमाम सूरतों में औरत वारिसा बनेगी। जब खावन ने औरत की तलाक को अपने फेल के साथ मुअल्लक किया है तो चाहे वो फेल ऐसा हो कि उसके बगैर गुजारा हो सके, और चाहे ऐसा फेल हो जिसके बगैर गुजारा न हो सके, और चाहे तालीक और शर्त दोनों मरजुल मौत में पाई जाएं, चाहे तालीक सेहत की हालत में है और शर्त मरजुल मौत में है, सबका एक ही हुक्म है जब खावन ने अपने फेल के साथ तलाक को मुअल्लक किया हो, और इन तमाम सूरतों में औरत वारिसा बनेगी। और अगर खावन ने तलाक को मुअल्लक किया है औरत के फेल के साथ, औरत के फेल के साथ, तो इस सूरत में या तो इस फेल के अलावा गुजारा हो सकता है या गुजारा नहीं हो सकता। मसलन खावन ने बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो इस सूरत में याद रखो अगर औरत उस घर में गई तो तलाक वाकई होगी, और फिर चाहे ये तालीक खावन ने मरजुल मौत में ही क्यों ना की हो जी। फिर भी औरत वारिसा नहीं बनेगी, चाहे तालीक किस में हो, मरजुल मौत में ही ये तालीक क्यों ना हो, फिर भी औरत वारिसा नहीं बनेगी। वजह यह कि कस्दे फिरार नहीं पाया गया भाई, क्योंकि खावन ने तलाक को मुअल्लक किया है औरत के ऐसे फेल के साथ कि उसके बगैर औरत का आराम से गुजारा हो सकता है। खावन ने कहा अगर उस घर में गई तो तुझे तलाक है, औरत उस घर में ना जाए, औरत उस घर में ना जाए, लेकिन जब खुद औरत उस घर में जा रही है, मालूम हुआ वो अपना हक बातिल करने पर राजी हो चुकी है, शौहर के माल में उसका हक आ चुका है, खावन मरजुल मौत में मुबतला है, और इस वक्त मसलन वो तालीक कर रहा है, औरत का हक उसके माल से मुतालिक हो चुका है, औरत उसकी वारिस बनने वाली है करीब के जमाने में, लेकिन औरत खुद ही उस घर में चली गई, उसने वो फेल कर लिया, मालूम हो वो खुद अपना हक बातिल करने पर राजी है भाई। तो जब मरजुल मौत में खावन तालीक करेगा और औरत उस फेल को कर लेती है जिसके बगैर चारा था, तो औरत वारिसा नहीं बनती। जब मरजुल मौत में तालीक के बाद औरत वो फेल करे, वारिसा नहीं बनती, तो सेहत की हालत में तो बतरीके औला वो वारिस नहीं बनेगी। खामन ने सेहत की हालत में ताली की, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, और औरत फिर मरजुल मौत के अंदर उस घर के अंदर चली गई। तो जब तालीक मरजुल मौत में होती थी और औरत शर्त पर अमल कर लेती थी तो वहां वो वारिसा नहीं बनती थी, तो जब तालीक सेहत के अंदर है और शर्त मरजुल मौत में है तो भी वहां बतरीके औला औरत वारिसा नहीं बनेगी। तवज्जो भी है या नहीं? खावन ने तलाक को किससे मुअल्लक किया है? औरत के फेल से, और औरत का फेल भी कैसा है कि उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। तो चाहे ये तालीक मरज में हो चाहे सेहत में हो, दोनों का एक ही हुक्म है कि इस फेल के बगैर तो गुजारा हो सकता था, लेकिन औरत फिर भी चली गई उस घर के अंदर, उसने शर्त पर अमल कर लिया, मालूम हुआ वो खुद अपना हक साकित करने पर राजी है, वो खुद जुदाई चाहती है, लिहाजा वारिसा नहीं बनेगी। लेकिन अगर खावन ने औरत के ऐसे फेल को जिक्र किया है जिसके बगैर चारा ही नहीं, कि मसलन अगर तूने खाना खाया तो तुझे तलाक है, या तूने जोहर की नमाज पढ़ी तो तुझे तलाक है, ये तो औरत के ऐसे फेल को जिक्र किया है खावन ने जिसके बगैर चारा ही नहीं। तो इस सूरत में याद रखो, शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक हो चाहे तालीक सेहत में हो और शर्त मरजुल मौत में, या चाहे तालीक और शर्त दोनों मरजुल मौत में पाए जाएं, लेकिन औरत का फेल ऐसा हो जिसके बगैर चारा नहीं, तो इन सूरतों में कस्दे फिरार पाया गया, इन सूरतों में कस्दे फिरार पाया गया है, लिहाजा औरत वारिसा बनेगी भाई, क्योंकि औरत मजबूर है, उसको तो वो फेल करना ही पड़ेगा भाई। तो चाहे तालीक सेहत में हो और शर्त मरजुल मौत में, या चाहे तालीक और शर्त दोनों मरजुल मौत में हो, दोनों का हुक्म एक ही है। तो मालूम हुआ हासिल कलाम यह कि अगर खावन औरत के फेल के साथ तलाक को मुअल्लक करता है, फिर चाहे तालीक सेहत में हो और शर्त मरजुल मौत में, या दोनों मरजुल मौत में हो, अगर वो फेल ऐसा है कि उसके बगैर चारा है तो औरत वारिसा नहीं बनेगी दोनों सूरतों में, और अगर वो फेल ऐसा है कि उसके बगैर चारा ही नहीं है तो फिर औरत वारिसा बनेगी, चाहे दोनों चीजें मरजुल मौत में हो, चाहे एक सेहत में हो और एक मरज में हो। बात समझ में आ गई? अब देखिए भाई, इसी को साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ, जब कहा किसी शख्स ने अपनी बीवी से, وَهُوَ صَحِيحٌ, इस हाल में कि वो शख्स तंदुरुस्त है, सेहत की हालत में है, खावंद कहता है, इदा जा रसु शहरी औ इदा दखल तिदारा औ इदा सल्ला फुलान उन जोहरा औ इदा दखल फुलान उन दारा, ये कई शर्तें जिक्र कर दी कि इनमें से कोई एक शर्त खावन जिक्र करता है और आगे कहता है, फअंति तालिकुन, तो तुझे तलाक है जी। तो अब वो शर्तें क्या हैं? इदा जा रसु शहरी, रसु शहर कहते हैं महीने के आगाज को, महीने के शुरू को, इदा जा रसु शहरी, जब फुला महीने का जब आगाज आ जाए, जब फुला महीना शुरू हो जाए तो तुझे तलाक है। और ये किस वक्त कह रहा है? सेहत की हालत में जी। किस वक्त? मैंने आपको बतलाया था कि जब तलाक को मुअल्लक करे वक्त के साथ या अजनबी के फेल के साथ, तो अगर तालीक और शर्त दोनों मरजुल मौत में हुए तो औरत वारिसा बनेगी, और अगर तालीक सेहत में हुई और शर्त मरजुल मौत में हुई तो औरत वारिसा नहीं बनेगी। अब आप मुझे बताइए, खावन ने क्या कहा? सेहत की हालत में इजाजा अरासु शहरी, अगर जब उस महीने का आगाज आ जाए तो तुझे तलाक है, और फिर ये महीना जब शुरू हुआ खावन मरजुल मौत में मुबतला हो चुका है, तो तालीक थी सेहत की हालत में और वक्त कब आया? मरजुल मौत में, तो आप क्या हुक्म लगाएंगे, औरत वारिसा बनेगी या नहीं? औरत वारिसा नहीं बनेगी। तालीक किस वक्त है? सेहत की हालत में, और शर्त कब पाई जा रही है? मरजुल मौत में, तो कस्दे फिरार नहीं पाया गया भाई, उसने तो सेहत की हालत में तालीक की थी जी। इसी तरह अजनबी आदमी के फेल के साथ मुअल्लक करता है खावन तलाक को, और सेहत की हालत में है कि इदा सल्ला फुलान उन जोहरा फांति तालिकुन, या इदा दखल फुलान उन दार फांति तालिकुन, चाहे फेल ऐसा हो जिसके सिवा चारा हो चाहे उसके सिवा चारा ना हो, लेकिन ये तालीक कब कर रहा है? सेहत की हालत में, और शर्त कब पाई जा रही है? मरजुल मौत में, तो इस सूरत में औरत वारिसा नहीं बनेगी, क्योंकि खस्ते फिरार नहीं पाया गया, क्योंकि तालीक तो उसने सेहत में की थी भाई। और इसके बजाय अगर खावन यूं कहता है इदा दखलती दारा, औरत के फेल से तलाक को मुअल्लक करता है, इदा दखलती दारा फंती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, और यह तालीक किस वक्त की है, सेहत की हालत में, और औरत उस घर में मरजुल मौत की हालत में गई है, तो इस सूरत के अंदर यह ऐसा फेल था जिसके सिवा चारा है, लिहाजा औरत वारिसा नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वइदा क़ाला अर्रजुलु लिमरअतिही व हुवा सहीहुन, और जब किसी शख्स ने अपनी बीवी से कहा इस हाल में कि वो सही था, वो तंदुरुस्त था, इदा जा रासु शहरी, जब उस महीने का आगाज आ जाए, और इदा दखलती दारा, या जब तू उस घर में दाखिल हो, देखो ये ऐसा फेल है जिसके सिवा चारा है, औ इदा सल्ला फुलानुन इज़्ज़ोहरा, जब फुलान जोहर की नमाज पढ़ ले, देखो ये ऐसा फेल है जिसके सिवा चारा नहीं है, औ इदा दखला फुलानुन इदारा, या जब फुलान उस घर के अंदर दाखिल हो जाए, ये ऐसा फेल है जिसके सिवा चारा है। भाई तो इन में से कोई शर्त मुकरर की और आगे कहा फअंति तालिकुन, तो तुरे तलाक है। कौन सी तलाक जिक्र की, तलाक बाइन या तीन तलाकें, क्योंकि तलाक रजाई में तो निकाह बरकरार रहता है, उसमें तो वो वारिसा बनती ही है। बात किसकी चल रही है, तलाक बाइन की। खावन जब बीवी को तलाक बाइन दे दे तो औरत वारिसा नहीं बनती भाई, क्योंकि निकाह टूट गया पूरे तौर पर। लेकिन मरजुल मौत में अगर तलाक बाइन या तीन तलाकें देगा तो मालूम हुआ ये रजुल फार है, ये फिरार का इरादा कर रहा है, इसलिए तो ये मरजुल मौत के मसले जिक्र हो रहे हैं। बात समझ में आ गई। वैसे तो तलाक बाइन या तीन तलाकें देगा तो औरत वारिसा नहीं बनेगी, चाहे इद्दत के अंदर ही खावन का इंतकाल क्यों ना हो जाए। तो कहते हैं फकानत हादिहिल अशिया, फकानत ये काना तामा है, काना तामा जहां सिर्फ फाइल पर बात पूरी हो जाती है, ऐसा बतत हादिहिल अशिया, ये चीजें साबित हो गई, ये यूं कहें वुजिदत हादिहिल अशिया, ये चीजें पाई गई भाई। तो कहते हैं फकानत हादिहिल अशियाउ, तो ये चीजें पाई गई, वज़ौजु मरीज़ुन, इस हाल में कि खावंद मरीज था यानी मरजुल मौत में मुब्तला था, लम तरिस, औरत वारिसा नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि तालीक सेहत में है और कस्द फिरार नहीं पाया गया, शर्त मरजुल मौत में है। व इनकान अल कौल फिल मरजी, और अगर यह कौल मरज की हालत में था, वरिसा, तो औरत वारिसा बनेगी, क्योंकि कस्दे फिरार पाया गया है, तालीक ही वो मरजुल मौत में कर रहा है। इल्ला फी कौली ही, मगर खावन के इस कौल में वारिसा नहीं बनेगी, इदा दखलती दार, जब औरत से कहा जब तू उस घर में गई, तवज्जो है, तो ये इजा का तर्जमा जब के साथ करें भाई, जब इदा जा रासु शहरी, जब उस महीने का आगाज आ जाए, और इदा दखलती दारा, जब तू उस घर में जाए, और इदा सल्ला फुलानुनी जोहरा, जब फुलां जोहर की नमाज पढ़े, और इदा दखला फुलानुनी दारा, जब फुलां उस घर के अंदर जाए। तो कहते हैं वह इनकान अल कौल फिल मरजी, और अगर ये कौल खावन का यानी ये जो तालीक थी ये भी मरजुल मौत में थी, और शर्त भी कब हुई मरजुल मौत में, तो वारिसत, औरत वारिसा बनेगी। इल्ला फी कौलिही इदा दखलती दारा, मगर खावन के इस कौल के अंदर, इदा दखलती दारा, जब तू उस घर में जाए, इसमें वारिसा नहीं बनेगी, क्योंकि इस फेल के बगैर भी चारा है। तो तालीक तो सेहत की हालत में की है, और औरत उस घर में मरजुल मौत की हालत में गई है, लेकिन उसका जाना बतला रहा है कि वो खुद अपना हक बातिल करने पर राजी है भाई। अब देखिए साहिब हिदायत को तफसील से बयान करेंगे, यहां तक मतन था, अब आगे शरा है। कहते हैं वहादा अला वजूहिन, और ये जो जिक्र किया गया ये कई सूरतों पर है, इम्मा अन युअल्लिक तलाक बी मजी इल वक्त, या तो खावन तलाक को मुअल्लक करेगा किसी वक्त के आने के साथ, औ बी फिअलिल अजनबी, या किसी अजनबी के फेल के साथ, औ बी फिअलि नफ्सी ही, या खावन अपने फेल के साथ तलाक को मुअल्लक करेगा, औ बी फिअलिल मरअती, या खावन उसी बीवी के फेल के साथ तलाक को मुअल्लक करेगा, वह कुल वजहिन अला वजहैनी, और फिर इनमें से हर सूरत जो है वो दो सूरतों पर है, इम्मा अन कानत तालीक फिस सेहती व शर्त फिल मरजी, या तो तालीक सेहत में होगी, व शर्त फिल मरजी, और शर्त मरजुल मौत में होगी, औकीला हुमा फिल मरजी, या दोनों मरजुल मौत में होंगे। अम्मल वजहान इल अव्वलानी, तो पहली दो वजह जो हैं वह हुआ मा इनकान तालीक बिमजी इल वक्ती, वो जिस वक्त के तालीक जो है वो बिमजी इल वक्ती वक्त के आने के साथ हो, खामन ने तलाक को मुअल्लक किया है वक्त के आने के साथ। बि अन काला, ये बात तस्वीरिया है, सूरत बतला रहे हैं। बि अन काला, बाई सूरत के खावंद ने यूं कहा है, ईदा जा अरसुश शहरी फांति तालिकुन, जब उस महीने का आगाज आए तो तुझे तलाक है, तो वक्त के साथ मुअल्लक किया। और बिफ़िअलिल अजनबी, या तालीक किसके साथ कर दी, अजनबी के फेल के साथ। बि अन काला, बाई सूरत के खावन ने यूं कहा, इदा दखला फुलान उनिदारा, के जब फुलां उस घर में दाखिल हो, अजनबी का ऐसा फेल जिक्र किया जिसके सिवा चारा है। और सल्ला फुलान उन जोहरा, जब फुला जो है जोहर की नमाज पढ़े, तो देखो अजनबी का ऐसा फेल जिक्र किया जिसके सिवा चारा नहीं, दोनों का एक ही हुक्म है। वकान तालीक व शर्त फिल मरजी, और ये तालीक और शर्त दोनों मरज में थे। फलहल मीरास, तो औरत के लिए मीरास होगी कब, जब इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हो। ले अन अलकस्द इल अल फिरार कद तहक्कका मिन्हु, इसलिए क्योंकि फिरार का इरादा कद तहक्कका, तहकीक वो पाया गया, मिन्हु खावंद की तरफ से, भी मुबाशरती तालीकी, मुबाशरत का माना सरंजाम देना, भी मुबाशरती तालीकी, बवजह तालीक सरंजाम देने के, फी हालिन ऐसी हालत में, ताल्लका हक्कुहा बिमालिही, कि औरत का हक मुतालिक हो चुका है बीमाली ही खावंद के माल के साथ। खावंद तालीक कब कर रहा है, मरजुल मौत में, और मरजुल मौत में तो औरत का हक खावंद के माल के साथ मुतालिक हो चुका है, लिहाजा कस्दे फिरार पाया गया। बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं फलहल मीरास, तो औरत के लिए मीरास होगी। लि अन्नल कस्द इलल फिरार कद तहक्कका मिन्हु, इसलिए क्योंकि फिरार का इरादा जो है कद तहक्कका मिन्हु, वो खावन की तरफ से पाया गया है, भी मुबाशरती तालीक फी हालिन, बवजह तालीक को सरंजाम देने के, यानी तालीक करने के, फी हालिन ऐसी हालत में, ताल्लका हक्कुहा बिमालिही, कि औरत का हक उसके खावन के माल के साथ मुतालिक हो चुका है। वह इनकान तालीक उफिस सेहति व शर्त फिल मरजी, और अगर तालीक तो सेहत की हालत में थी, व शर्त फिल मरजी, और शर्त मरजुल मौत में थी, लम तरिस, औरत वारिसा नहीं बनेगी, क्योंकि कस्दे फिरार नहीं पाया गया, सेहत की हालत में तालीक की है खामन ने। वकाल जुफरु रहमहुल्ला, और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं, तरिस औरत वारिसा बनेगी, लिअन्न अल मुअल्लक बिश्शर्ति यंज़िलु इंदा वुजूदि शर्ति कल मुनज्जज़ी। भाई देखो, तालीक जो है वो सेहत की हालत में है, और शर्त कब पाई गई, मरजुल मौत में पाई गई, तो हमारे नजदीक कस्दे फिरार नहीं पाया गया, क्योंकि तालीक तो उसने सेहत की हालत में की थी। लेकिन इमाम जुफर फरमाते हैं, नहीं, इस हालत में भी औरत वारिसा बनेगी अगर इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हो जाए, चाहे तालीक सेहत में ही क्यों ना हो। वजह क्या, वजह यह जाबता है, जैसे पहले मैंने जिक्र किया था कि मुअल्लक जो है वो सबब बनता है इंदा वजूद शर्त, मुअल्लक जो है वो सबब बनता है इंदा वजूद शर्त, इंदा लहनाफ और इंदा शवाफ, मुअल्लक जो है वो सबब बनता है इंदा तकल्लुम। भाई खामन ने बीवी से कहा, अंत तालिकुन इन दखलती दारा, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो इमाम शाफिर हमला के नजदीक ये अंत तालिकुन इसी वक्त तलाक का सबब बन रहा है, यानी ईकाए तलाक इसी वक्त हो रहा है, लेकिन वुकू नहीं हो रहा, यानी इसका हुक्म नहीं आ रहा इस शर्त की वजह से। औरत जब उस घर में जाएगी तो तब वुकूए तलाक भी हो जाएगा। तो उनके नजदीक ये अंति तालिकुन ये तलाक का सबब बन रहा है तकल्लुम के वक्त ही, जबकि हमारे नजदीक अंति तालिकुन ये इल्लत है, और तलाक का वाकई होना इसका मालूल है, और इल्लत और मालूल एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। जब इल्लत पाई जाए तो मालूल का पाया जाना जरूरी है भाई, वरना तो फिर ये इल्लत और मालूल ही नहीं है भाई। इल्लत और मालूल कहते ही उसको हैं कि इल्लत जब भी पाई जाए मालूल जरूर पाया जाए। जैसे सूरज जब भी निकलेगा दिन जरूर होगा, आप जब भी ताले में चाबी घुमाएंगे ताला जरूर खुलेगा। इल्लत जब भी पाई जाए, मालूल जरूर पाया जाता है, मालूल इल्लत से जुदा नहीं हो सकता। अगर जुदा हो जाता है, मालूम हुआ ये इसकी इल्लत ही नहीं है भाई। तो हमारे नजदीक खावन ने बीवी से कहा इन दखलती दार फानती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो खावन ने तलाक को मुअल्लक कर दिया है दुखूल दार के साथ। तो ये जो मुअल्लक है हमारे नजदीक, ये वाला अंती तालिकुन फिलहाल तलाक का सबब बन ही नहीं रहा। जब औरत उस घर में जाएगी तो उस वक्त अंती तालिकुन आएगा और औरत पर तलाक वाकई हो जाएगी। तो मालूम हुआ हमारे नजदीक मुअल्लक भी शर्त वो कब सबब बनता है, वजूद शर्त के वक्त। हमारे नजदीक मुअल्लक जो है वो सबब बनता है वजूद शर्त के वक्त। तो लिहाजा इमाम जुफर यही दलील पेश फरमा रहे हैं, कहते हैं खावन ने तालिक सेहत के जमाने में की थी, लेकिन वो अंती तालिकुन तो तलाक का सबब बन ही नहीं रहा था, और इस वक्त मरजुल मौत में वो शर्त पाई गई, तो इस वक्त गोया अंती तालिकुन आया और औरत को क्या हो गई, तलाक। ये इसी तरह है गोया खावन इसी वक्त मरजुल मौत, देखो ये शर्त कब पाई गई है, मरजुल मौत में, तालिक कब है सेहत में, और शर्त कब है मरजुल मौत में। दो गोया मरजुल मौत में अंती तालिकुन पाया गया है, ये इसी तरह है खावन जैसे इसी वक्त मुनज्जस तलाक दे रहा है, इस वक्त खावन बीवी को अंती तालिकुन कह रहा है, वो जो मुअल्लक था वो इस वक्त सबब बन रहा है, गोया इस वक्त खावन अंती तालिकुन बीवी को कह रहा है, और इस वक्त तो खावन मरजुल मौत में मुबतला है। और मरजुल मौत में मुबतला हो खावन अपनी बीवी को मुनज्जस तलाक दे तो औरत इद्दत के अंदर वारिसा बनती है, तो लिहाजा यहां भी औरत वारिसा बनेगी। दलील उनकी समझ में आई, हमारे नजदीक तो तालिक सेहत में थी, शर्त मरज में है, और खावन की तरफ से कस्ते फिरार नहीं पाया गया, लेकिन इमाम जुफर क्या फरमाते हैं, वो जो मुअल्लक तलाक है वो तो उस वक्त तो तलाक का सबब नहीं बनी, वो इस वक्त तलाक का सबब बनेगी, इस वक्त अंती तालिकुन आएगा, गोया इस वक्त मरजुल मौत में खावन बीबी को कह रहा है अंती तालिकुन, और मरजुल मौत में खावन बीबी को अंती तालिकुन कहे तो बीवी वारिसा बनती है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वकाल जुफर रहमहुल्ला, और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं तरीसु की औरत वारिसा बनेगी अगर ये तालिक सेहत में है, लेकिन शर्त तो मरजुल मौत में है भाई, लिअन्न अल मुअल्लक बिशर्ती यंज़िलु इंदा वुजूदी शर्ती, इसलिए क्योंकि वो तलाक जो शर्त के साथ मुअल्लक होती है, यंज़िलु वो नाजिल होती है, वो उतरती है, इंदा वुजूदी शर्ती जब शर्त पाई जाए भाई, कल मुनज्जजी जैसे के मुनज्जस तलाक, जैसे मुनज्जस तलाक यानी जो उसी वक्त खावन दे दे मुअल्लक ना करे। बात समझ में आ गई। तो गोया उस वक्त जब वो शख्स वो फेल करेगा या वो वक्त आएगा, और खावन तो किस में है मरजुल मौत में, तो वो जब शर्त पाई जाएगी तो उस वक्त गोया खावन अंती तालिकुन कह रहा है, और इस वक्त तो खावन मरजुल मौत में है। तो कहते हैं लिअन्न अल मुअल्लक बिशर्ती, इसलिए क्योंकि वो तलाक जो शर्त के साथ मुअल्लक होती है, यंज़िलु इंदा वुजूदी शर्ती, वो शर्त पाए जाते वक्त उतरती है, कल मुनज्जजी जैसे कि मुनज्जस तलाक होती है। मुनज्जस तलाक मैंने बताया एक है मुअल्लक जिसको मुअल्लक कर दिया जाए, और एक मुनज्जस है जो उसी वक्त तलाक दी जाए, उसको मुनज्जस कहते हैं। तो ये मुअल्लक भी किसकी तरह हुई, मुनज्जस की तरह हुई। फकान ईकान फिल मरजी, तो ये मरजुल मौत में तलाक वाकई करने की तरह हुआ, लिहाजा औरत वारिसा बनेगी। वलाना अन्न तालीक साबिक यसीरु तत्लीक अनाइंदा शर्त हुक्मन ला कसदन, हम कहते हैं आपकी बात हमें तस्लीम है कि मुअल्लक मुअल्लक सबब बनता है अनाइंदा वजूद शर्त, लेकिन हुक्मन ला कसदन, हुक्मन वो उस वक्त तलाक का सबब बनता है, कसदन नहीं। वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्न तालीक साबिका, के वो साबका तालीक जो है, कौन सी तालीक, वो जो सेहत की हालत में की थी, कि वो जो साबका तालीक है यसीर ततलीकन, ये ततलीक बनेगी। ततलीक का क्या माना, तलाक देना, यानी अंती तालिकुन कहना, कि वो जो साबका तालीक थी यसीर ततलीकन, ये ततलीक बनेगी। इंद शर्ती, किस वक्त, जब शर्त पाई जाएगी। हमें आपकी बात तस्लीम है कि साबका तालीक वो ततलीक बनेगी, कब, जब शर्त पाई जाएगी, लेकिन ये हुक्मन है ला कसदन, कसदन नहीं है, यानी ये हुक्म लगाया जाता है, कसदन ऐसा नहीं। याद रखो, बात यह चल रही है, बात यह चल रही है कि खावंद जब मरजुल मौत में मुबतला है, अब यह मरने वाला है, बीवी इसकी वारिसा बनने वाली है, और इस हालत के अंदर यह बीवी को तलाक बाइन देता है या तीन तलाकें देता है। मालूम हुआ यह औरत पर जुल्म कर रहा है, उसको उसके हक से महरूम करना चाहता है भाई, तो यह औरत को उसके हक से महरूम करना चाहता है, यह जुल्म करना चाहता है, लिहाजा इसके इस तसर्रुफ को मुअख्खर कर दिया जाएगा इद्दत तक। वो औरत के हक को बातिल करना चाहता है इसी वक्त, लेकिन इस इब्ताल हक को क्या कर दिया जाएगा, मुअख्खर कर दिया जाएगा इद्दत तक। इद्दत तक अगर इसका इंतकाल हो गया तो औरत वारिसा बनेगी, और अगर इद्दत के बाद इंतकाल हुआ फिर वारिसा नहीं बनेगी, क्योंकि इद्दत गुजर चुकी है। मालूम हुआ खावन जब मरजुल मौत में तलाक बाइन या तीन तलाकें देता है, वो जुल्म कर रहा है और कसदन कर रहा है, अपने इरादे से कर रहा है। लेकिन यहां पर वो तालीख साबिक है, पहले है, वो तो सेहत की हालत में खावन ने तलाक को मुअल्लक किया था कि अगर फला महीने का आगाज आया तो तुम्हें तलाक है, या जैद ने फला फेल किया तो तुम्हें तलाक है। यह खावन ने किस वक्त की थी तालीक, सेहत की हालत में, और यह शर्त कब पाई गई, मरजुल मौत में। तो वो जो साबका तालीक थी इस मरजुल मौत के अंदर ततलीक बन रही है, इस वक्त अंति तालिकुन आ रहा है, लेकिन इस वक्त जो अंति तालिकुन आ रहा है वो हुक्मन आ रहा है या कसदन आ रहा है, हुक्मन इस वक्त अंति तालिकुन आ रहा है, कसदन नहीं, खावंद का अपना इरादा नहीं है। और जुलम, जुलम तो हमेशा कसद से होता है, बगैर कसद और इरादे के तो जुलम नहीं होता। लिहाजा यहां पर बेशक इस वक्त तलाक अंति तालिकुन आ रहा है मरजुल मौत में, लेकिन ये ततलीक हुक्मन है, कसदन नहीं। अगर ये कसदन ततलीक होती, कसदन खावंद इस वक्त तलाक दे रहा होता तो फिर जुलम था, लेकिन ये ततलीक तो क्या है, हुक्मन है, कसदन नहीं, लिहाजा इसका वो हुक्म नहीं होगा जो कसदन ततलीक का हुक्म होता है। ये इसी तरह है, ये इसी तरह है जैसे एक शख्स है, उसने अपनी बीवी की तलाक को मुअल्लक कर दिया, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है। एक आदमी ने क्या किया, मुअल्लक कर दिया अपनी बीवी की तलाक को दुखूले दार पर, और फिर इत्तेफाक से बाद में ऐसा हुआ कि इस शख्स को जुनून के दौरे पड़ने लगे, और आप जानते हैं मजनून की तलाक वाकई नहीं होती, तो यह शख्स जुनून की हालत में था और औरत उस घर में चली गई। औरत जैसे ही उस घर में गई क्या आ गया, अंति तालिकुन, और साथ ही क्या हो गई, तलाक हो गई। हालांकि अगर यह कसदन ततलीक होती तो इस वक्त तो खावंद मजनून है और मजनून की तो तलाक वाकई नहीं होती, तो यह तलाक वाकई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सब क्या कहते हैं, तलाक वाकई हो जाएगी, क्योंकि यह ततलीक हुक्मन है, कसदन नहीं है। हुक्मन इस वक्त ततलीक पाई जा रही है, यह हुक्म लगा दिया गया है, कसदन यानी इरादे से इस वक्त ततलीक नहीं है। इस वक्त खावंद ने अंति तालिकुन नहीं कहा क्योंकि इस वक्त वो मजनून है भाई। या दूसरी सूरत ले लें, एक शख्स है, उसने अपनी बीवी की तलाक को मुअल्लक कर दिया, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है। तवज्जो है, तलाक मुअल्लक हो गई, और बाद में इस शख्स ने अपनी बीवी को कसम खाकर कह दिया कि वल्लाह मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी तलाक नहीं दूंगा, वल्लाह मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी तलाक नहीं दूंगा। बाद में किसी वक्त वो औरत उस घर के अंदर चली गई, तो वही अंति तालिकुन जो मुअल्लक था वो आ गया, और आते ही औरत को तलाक वाके हो गई। लेकिन ये जो अंति तालिकुन आया ये हुक्मन आया है, कसदन नहीं, इसलिए ये शख्स हानिस भी नहीं, वरना इसने तो कसम खाई थी कि मैं बीवी को तलाक नहीं दूंगा। मालूम हुआ ये जो तलाक है ये हुक्मन है, कसदन नहीं, वरना यह शख्स हानिस हो जाता। बात समझ में आ गई। लिहाजा ततलीक तो की थी खावंद ने सेहत की हालत में, और शर्त कब पाई गई, मरजुल मौत में, तो मरजुल मौत में गोया ततलीक पाई गई, लेकिन यह ततलीक, ततलीक का क्या माना है, खावंद का तलाक देना यानी अंति तालिकुन कहना। तो इस वक्त जब शर्त मरजुल मौत में पाई गई तो अंति तालिकुन भी कब पाया गया, मरजुल मौत में, यानी ततलीक मरजुल मौत में पाई गई, लेकिन यह ततलीक हुक्मन है, कसदान नहीं, लिहाजा इसमें जुल्म नहीं, खावन कोई जुल्म नहीं करना चाहता। और औरत तो वारिसा क्यों बनती थी, क्योंकि खावंद कसदन जुल्म करना चाहता था, लेकिन यहां खावंद के कसद का दखल नहीं है भाई। वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्न तालीक साबिका यसीरु ततलीकन इंद शर्ती, कि साबका तालीक जो है वो ततलीक बन जाती है इंद शर्ती, शर्त के वक्त, हुक्मन ला कसदन, और ये जो साबका तालीक ततलीक बनती है हुक्मन ला कसदन, ये हुक्मन ततलीक बनती है कसदन नहीं, यानी इस पर हुक्म लगा दिया जाता है कि इस वक्त ततलीक है भाई। वला जुल्म इल्ला अन कसदिन, और जुल्म तो नहीं होता मगर इरादे से ही, तो लिहाजा यहां जुल्म नहीं है। फला युरद्दु तसर्रुफुहू, लिहाजा खावन के तसर्रुफ को रद्द नहीं किया जाएगा। कौन सा तसर्रुफ? मसलन यहां खावन ने तलाके बाइन को मुअल्लक किया है, तलाके रजई नहीं भाई, ये सारी बहस ही किसके बारे में चल रही है? मरजुल मौत में तलाके बाइन देने की बात चल रही है, क्योंकि तलाके रजई में तो बिल इतफाक औरत वारिसा बनती है भाई, इद्दत के अंदर खावन का इंतकाल हो जाए, तो लिहाजा खावन के तसर्रुफ को रद्द नहीं किया जाएगा। फला युरद्दु तसर्रुफुहु, तो खावन के तसर्रुफ को रद्द नहीं किया जाएगा कि खावन ने जो तलाक दी है उसके अमल को मुअख्खर कर दिया जाए इद्दत के गुजरने तक, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां जुलम नहीं है। लिहाजा जैसे ही मरजुल मौत में शर्त पाई जाएगी और निकाह टूट गया, अब औरत वारिसा नहीं बनेगी क्योंकि जुल्म नहीं पाया गया। माना समझ में आ गया? यह माना है फला युरद्दु तसर्रुफुहु, लिहाजा खावंद के तसर्रुफ को रद्द नहीं किया जाएगा, यानी उसके अमल को इद्दत तक मुअख्खर नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, फअम्मल वजहु सालिसु, बाकी तीसरी वजह जो है वह हुआ, और वह सूरत मा इदा अल्लकहु बिफ़िअलि नफ्सिही, खावंद अगर अपने फेल के साथ बीवी की तलाक को मुअल्लक करता है। मैंने आपको बतला दिया कि चाहे वो फेल ऐसा हो जिसके सिवा चारा हो, चाहे ऐसा फेल हो जिसके बगैर गुजारा ना हो, जो मर्जी फेल हो, और नीस चाहे तालीक और शर्त दोनों मरजुल मौत में हो, या तालीक सेहत में है और शर्त मरजुल मौत में है, तमाम सूरतों के अंदर औरत वारिसा बनेगी, औरत वारिसा बनेगी। अब वही बयान कर रहे हैं, कहते हैं फअम्मल वजहु सालिसु, तो तीसरी वजह जो है वह हुआ मा इदा अल्लकहु बिफ़िअलि नफ्सिही, जब खामन ने तलाक को मुअल्लक कर दिया अपने जाती फेल के साथ, फसवा उन कानत तालीकु फिस्सेहति व शर्तु फिल मरजी, तो बराबर है कि तालीक सेहत में हो और शर्त मरज में हो, औकाना फिल मरजी, या दोनों ही मरज में हो। वल्फ़िअलु मिम्मा लहु मिन्हु बुद्दुन, और फेल जो है मिम्मा उन अफाल में से हो, लहू मीन हु बुद्दुन, के खावन के लिए उसके सिवा भी चारा हो। लाबुद्दा, लाबुद्दा का क्या माना होता है? जरूरी। लाबुद्दा जरूरी, यानी जिसके सिवा चारा न हो। तो कहते हैं वल्फ़िअलु मिम्मा लहू मीन हु बुद्दुन, वल्फ़िअलु और फेल जो है मिम्मा उन अफाल में से हो, लहू मीन हु बुद्दुन, के खावन के लिए उसके सिवा चारा हो। औला बुद्द लहू मिन हो, या खावंद के लिए उसके सिवा चारा ही ना हो, जो मर्जी फेल हो, और चाहे तालीक और शर्त दोनों मरज में हो, या तालीक सेहत में हो और शर्त मरज में हो, सबका हुक्म बतला रहे हैं। ये सब सूरतें बराबर हैं, ये सब सूरतें फसवा उन आया था, फसवा उन, ये सब सूरतें बराबर हैं। फयसीरु फारन लि वजूदी कस्द लिब्ताली, तो लिहाजा खावंद फार बन जाएगा, यानी भागने वाला बन जाएगा, लि वजूद कस्द इब्ताली, इब्ताल का कस्द पाए जाने की वजह से, मालूम हो वो बीवी के हक को बातिल करना चाहता है, तो फयसीरु फारन लि वजूद कस्द इब्ताली, तो बीवी का हक बातिल करने का कसद पाए जाने की वजह से वो फार बन जाएगा। इम्मा बितालीकी और भी मुबाशरती शर्त फिल मरजी, या तो तालीक करने की वजह से, मरजुल मौत में तालीक कर रहा है, मालूम है ये फार है, ये रजुले फार है, रा मुशद्दद है, रजुलुन फारुन, तो ये रजुले फार बन जाएगा। इम्मा बितालीक, या तो किसकी वजह से, तालीक की वजह से कि मरजुल मौत में तालीक कर रहा है, मालूम है ये क्या है, रजुले फार। और भी मुबाशरती शर्त फिल मरजी, या मरज के अंदर शर्त सर अंजाम देने की वजह से, तालीक कब की है? अगर तो तालीक ही मरजुल मौत में कर रहा है फिर तो ये रजुले फार है, साबित हो गया, और अगर तालीक सेहत में की है लेकिन ये फेल कब कर रहा है, मरजुल मौत में, तो मरजुल मौत में भी फेल जब खुद सर अंजाम दे रहा है तो ये रजुल फार साबित हो जाएगा, रजुल फार साबित हो जाएगा। इस पर जहनों में इश्काल आता है, जहनों में इश्काल आता है। मसलन खावन के फेल तो दो तरह के हो सकते हैं, कुछ वो हैं जिनके बगैर गुजारा है, कुछ वो हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं। मसलन अगर खावन ने कहा, खावन ने ऐसा फेल जिक्र किया जिसके सिवा चारा है कि अगर मैं उस घर में गया तो तुझे तलाक है, अपना फेल जिक्र किया, और ये ऐसा फेल है कि उस घर में जाए बगैर भी गुजारा हो सकता है, तो इस सूरत में ये तालीक उसने कब की है, मसलन सेहत की हालत में, और उस घर में ये कब गया है, मरजुल मौत की हालत में, तो भाई ये तो ऐसा फेल था कि इसके सिवा भी चारा था, और आप मरजुल मौत में उस घर के अंदर जा रहे हैं, मालूम हुआ आपका फिरार का इरादा है, आपका फिरार का इरादा है, लिहाजा बीवी वारिसा बनेगी अगर इद्दत के अंदर आपका इंतकाल हुआ। लेकिन अगर ऐसा फेल हुआ जिसके सिवा चारा ही नहीं है, फिर तो कस्दे फिरार नहीं पाया गया। मसलन खावन ने सेहत की हालत में तालीक की कि अगर मैंने जोहर की नमाज पढ़ी तो तुझे तलाक है। अब जोहर की नमाज पढ़ना तो फर्ज है, वो तो जरूर पढ़नी पड़ेगी, या इसी तरह अगर मैंने खाना खाया तो तुझे तलाक है, अब खाना तो जरूर खाना पड़ेगा। तो खावंद ने अपना ऐसा फेल जिक्र किया जिसके सिवा चारा ही नहीं है, और ये तालीक उसने कब की है, सेहत की हालत में, लेकिन फिर मरजुल मौत में मुबतला हो गया। अब मरजुल मौत के अंदर ये फेल वो वाला कर रहा है, तो अब तो कस्दे फार नहीं है, अब तो वो मजबूर है, उसने तो तालीक कब की थी, सेहत की हालत में, उसे क्या पता था मैं मरजुल मौत में मुबतला हो जाऊंगा, लेकिन मरजुल मौत में मुबतला हुआ, अब वो वाला फेल कर रहा है जो करना ही पड़ेगा उसको हर हाल में, तो इसमें तो कस्दे फिरार नहीं है, वो बेचारा मजबूर है, खावन मरजुल मौत में ये फेल कर रहा है लेकिन मजबूर है, करना ही पड़ेगा। तो ये शुबा आता है कि इस सूरत में तो कस्दे फिरार साबित नहीं होता क्योंकि खावन मजबूर है। तो साहिबे हिदाया उसका आगे जवाब देंगे कि भाई अगरचे ये फेल करने में तो खावंद मजबूर था, लेकिन जो तालीक इसने की थी, तालीक करने में तो मजबूर ना था ना, तालीक ना करता भाई, बात समझ में आ गई। लिहाजा जब इसने तालीक की थी और ऐसे फेल की तालीक की है जो इसको करना ही पड़ेगा और मरजुल मौत में वो फेल करना पड़ा, तब भी हम कहेंगे कि ये रजुले फार ही है भाई, क्योंकि फेल के बगैर तो चारा नहीं, लेकिन तालीक के बगैर तो चारा था, क्या जरूरत थी तालीक करने की भाई, लिहाजा हर हाल में कस्दे फिरार पाया गया भाई। देखिए फिर तर्जमा थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए, फयसीरु फारन लिवजूद कस्दिल इबताली, तो खावन जो है वो फार हो जाएगा, यानी रजुल फार हो जाएगा, लिवजूद कस्दिल इबताली, इस वजह से कि इबताल का इरादा पाया गया, इम्मा बितालीकी और भी मुबाशरत शर्ती फिल मरजी, या तो मरज में तालीक करने की वजह से या मरज के अंदर शर्त वाला फेल सरंजाम देने की वजह से फिरार का कस्द पाया गया। वह इल्लम यकुन लहू मिन फ़िअली शर्ति बुद्दुन, वह इल्लम यकुन लहू, और अगरचे खावन के लिए नहीं है, मिन फ़िअली शर्ति बुद्दुन फेले शर्त से चारा, अगरचे खावन के लिए फेले शर्त से चारा नहीं है, यानी कोई ऐसा फेल जिक्र किया है कि जो उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन फलहू मिन तालीक अल्फ बुद्दीन, लेकिन खावन के लिए तालीक से तो हजार चारे थे, तालीक न करता भाई, बात समझ में आ गई, फेल के करने से तो अब कोई चारा नहीं, फेल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तालीक से तो चारे मौजूद थे भाई, तालीक न करता भाई। तो कहते हैं वह इल्लम यकुन लहू मिन फ़िअली शर्ति बुद्दुन, अगरचे खावन के लिए फेले शर्त से चारा नहीं है, वो उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन फलहू मिन तालीक अल्फ बुद्दीन, लेकिन खावन के लिए तालीक से तो हजार चारे थे, फयुरद्दु तसर्रुफुहु, लिहाजा खावन के तसर्रुफ को रद्द कर दिया जाएगा, यानी उसके अमल को मुअख्खर कर देंगे इद्दत के गुजरने तक, इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हुआ तो औरत वारिसा बनेगी, फयुरद्दु तसर्रुफुहु, तो खावंद के तसर्रुफ को रद्द कर दिया जाएगा, यानी उसके अमल को मुअख्खर कर दिया जाएगा, दफअन लिज़रर अनहा, औरत से जरर को और नुकसान को दूर करने के लिए। वह अम्मल वजहुर राबिई, और बाकी चौथी सूरत जो है वह हुआ मा इदा अल्लकहु बिफ़िअलिहा, कि जब खावन ने तलाक को मुअल्लक किया है, बिफ़िअलिहा, उसी बीवी के फेल के साथ, फ फइनकानत तालीक व शर्त फिल मरजी, अगर तालीक और शर्त दोनों मरजुल मौत में हैं, वल्फ़िअलु मिम्मा लहा मिन्हु बुद्दुन, और फिल ऐसा है कि औरत का उसके बगैर भी गुजारा है, उसके बगैर भी औरत का चारा है, का कलाम ज़ैदिन व नहवहु, जैसे जैद के साथ कलाम है, व नहवहु और इस जैसे। मसलन खामन ने बीवी से कहा अगर तूने जैद से बात की तो तुझे तलाक है, तो तालीक खावन ने मरजुल मौत में की और बीवी ने जैद से कलाम भी मरजुल मौत में कर लिया, तो बेशक ये तालीक मरजुल मौत में है, लेकिन ये तो ऐसा काम था कि इसके बगैर भी औरत का गुजारा हो सकता था, फिर भी उसने ये बात की है, मालूम है वो खुद अपना हक बातिल करने पर राजी है भाई। तो कहते हैं वल्फ़िअलु मिम्मा लहा मिन्हु बुद्दुन, और फेल जो है वो उन अफ़आल में से है कि औरत के लिए उसके सिवा भी चारा है, का कलाम ही ज़ैदिन जैसे जैद का कलाम है, व नहवहु और इस जैसे, लम तरिस तो औरत वारिसा नहीं बनेगी, लिअन्नहा राज़ियतुन बिज़ालिका, इसलिए क्योंकि वो खुद इस पर राजी है, वो खुद इस तलाक पर राजी है, यूं कहें वो खुद अपना हक बातिल करने पर राजी है, जैद से बात ना करती क्या जरूरत थी, इसके बगैर भी गुजारा था, लेकिन इसने खुद बात करके खुद अपना हक बातिल किया है भाई। वह इनकान अल्फ़िअलु ला बुद्द लहा मिन्हु, और अगर फिल ऐसा है कि उसके बगैर चारा नहीं है, का अकली तआमी जैसे कि खाना खाना, व सलात ज़ुहरी और ज़ुहर की नमाज, व कलामिल अबावैनी और मां बाप से कलाम, भाई देखिए तीन मिसालें साहिब काफिया ने जिक्र कर दी, ऐसा फेल जिसके सिवा चारा ही नहीं है, जैसे खाना खाना या नमाज पढ़ना या वालिदैन से बात करना, तीन मिसालें जिक्र की। पहली मिसाल खाना खाना, ये नफ्स का हक है, ये नफ्स का हक है, खाना खाना पड़ेगा आपको अपनी जिंदगी के लिए, और जोहर की नमाज पढ़ना ये मिसाल है हकुल्लाह की भाई, अल्लाह का हक है, अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का, और वह कलामिल अबावैनी और मां बाप से बातचीत, ये वालिदैन का हक है कि उनकी खिदमत की जाए, उनसे बातचीत की जाए, तो ये हकुल अब्द है। तो तीनों की मिसालें दे दी साहिब काफिया ने, हक नफ्स की मिसाल भी और हकुल्लाह की मिसाल भी और हकुल अब्द की मिसाल भी, तो ऐसा फेल जिक्र किया तो फिर औरत वारिसा बनेगी। तो कहते हैं वह इनकान अल्फ़िअलु ला बुद्द लहा मिन्हु, और अगर फेल जो है ऐसा है कि औरत के लिए उसके सिवा चारा नहीं है, का अकली तआमी जैसे कि खाना खाना, व सलात ज़ुहरी और ज़ुहर की नमाज पढ़ना, व कलामिल अबावैनी और मां बाप से कलाम जो है, तरीसु तो इस सूरत में औरत वारिसा बनेगी, लिअन्नहा मुज़्तर्रतुन फिल मुबाशरती, लिअन्नहा मुज़्तर्रतुन क्योंकि औरत मजबूर है, फिल मुबाशरती इन कामों के सरंजाम देने में, औरत इन कामों के करने में मजबूर है। भाई क्यों मजबूर क्यों है, कहते हैं लिमा लहा फिल इम्तिनाई मिन खौफिल हलाकी, लिमा उस वजह से जो लहा इस औरत के लिए है, फिल इम्तिनाई बाज रहने में, रुक जाने में, उस चीज की वजह से जो बाज रहने में है, और वो क्या चीज है, मीन के साथ बयान कर रहे हैं, मीन खौफिल हलाकी फिल दुनिया औ फिल उकबा, यानी दुनिया में हलाकत का खौफ औ फिल उकबा या आखिरत में हलाकत का खौफ, बाज चीजों के बगैर गुजारा नहीं, अगर वो नहीं करेगी तो दुनिया में हलाकत का खौफ है, मसलन खाना नहीं खाती तो दुनिया में हलाक हो जाएगी, और बात चीजों की वजह से आखिरत के हलाक का खौफ है, मसला नमाज नहीं पढ़ती या वालिदैन से बात नहीं करती तो इस सूरत में आखिरत में हलाकत का खौफ है कि आखिरत में उसका मुआखजा होगा भाई। तो कहते हैं लिअन्नहा मुज़्तर्रतुन फिल मुबाशरती, इसलिए क्योंकि ये औरत जो है मजबूर है इन अफ़आल को सर अंजाम देने में, लिमा लहा फिल इम्तिनाई मिन खौफिल हलाकी फिल दुनिया औ फिल उकबा, इस वजह से कि इस औरत के लिए इन चीजों से इन अफ़आल से बाज रहने में, इन अफ़आल से रुकने में दुनिया या आखिरत के अंदर हलाकत का खौफ है, वला रिजा अमाल इस्तेरारी और रिजामंदी नहीं होती माल इस्तेरारी मजबूरी के साथ, ये तो मजबूर है इन अफ़आल के करने में और मजबूरी के साथ रजामंदी नहीं हो सकती, मजबूरी और चीज है और रजामंदी और चीज दोनों एक दूसरे की जिद है भाई, जब मजबूरी है तो रजामंदी नहीं और जब रजामंदी है तो मजबूरी नहीं है भाई। तो कहते हैं वला रिजा अमा अल इस्तिरारी और रजामंदी के साथ तो मजबूरी नहीं होती, وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ, اور اگر تعلیق جو ہے وہ تو صحت کی حالت میں تھی, وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ اور شرط مرض الموت میں تھی, تو کہتے ہیں ان کان الفعل مما لها منه بد, تو اگر فعل ان افعال میں سے ہے کہ اس کے سوا بھی چارہ ہے, فلا اشکال انه لا میراث لها, تو کوئی اشکال نہیں کہ اس عورت کے لیے میراث نہیں ہوگی. خاوند نے صحت میں تعلیق کی ہے کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے, اور مرض الموت کے اندر عورت اس گھر میں چلی گئی, تو تعلیق بے شک صحت میں ہے لیکن عورت کا اس فعل کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا, لہذا معلوم ہوا وہ خود اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہے تو وارثہ نہیں بنے گی. تو کہتے ہیں فلا اشکال انہ لا میراث لہا, تو اس بات میں کوئی اشکال نہیں کہ اس کے لیے کوئی میراث نہیں ہوگی کیونکہ فعل کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا. وہ ان کان مما لا بد لہا منہ, اور اگر فعل ان افعال میں سے ہے کہ عورت کے لیے اس کے سوا چارہ ہی نہیں, فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ, تو بھی اسی طرح جواب ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک, وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ, اور یہی قول ہے امام زفر کا بھی. بھئی اب اس فعل کی بات چل رہی ہے جس کے سوا چارہ نہیں ہے, خاوند نے تعلیق جو ہے وہ صحت کی حالت میں کی ہے کہ اگر تُو نے ظہر کی نماز پڑھی یا کھانا کھایا تو تیرے طلاق ہے, اور شرط کب پائی گئی ہے؟ مرض الموت میں. تو اس صورت کے اندر شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت پھر بھی وارثہ بنے گی, عورت پھر بھی وارثہ بنے گی کیونکہ ان افعال کے بغیر گزارا نہیں ہے. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور یہی قول امام زفر کا بھی ہے, کہ اس صورت کے اندر عورت وارثہ نہیں بنے گی. فعل کیسا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں, فعل ایسا ہے کہ اس کے بغیر گزارا اور چارہ نہیں, اور تعلیق کب کی ہے؟ صحت کی حالت میں, اور یہ فعل عورت کب کر رہی ہے؟ مرض الموت میں. تو امام محمد اور امام زفر فرماتے ہیں اب وہ عورت وارثہ نہیں بنے گی. بھئی کیوں نہیں بنے گی؟ کہتے ہیں وجہ یہ کہ خاوند نے صحت کی حالت میں تعلیق کی ہے, مرض الموت میں تو خاوند کی طرف سے کوئی فعل نہیں پایا گیا, وہ شرط پائی گئی ہے لیکن اس میں تو خاوند کا دخل نہیں ہے. خاوند نے تو تعلیق کس وقت کی تھی؟ صحت کی حالت میں. وہ فعل اگرچہ ایسے ہے کہ عورت کو کرنا ہی پڑے گا, لیکن مرض الموت میں جب یہ عورت یہ فعل کر رہی ہے اور اس کے کرنے پر مجبور ہے, تو خاوند کا تو کوئی اس میں دخل نہیں ہے کیونکہ خاوند نے تو تعلیق صحت کی حالت میں کی تھی, مرض کی حالت میں تو خاوند نے کوئی فعل نہیں کیا. بات سمجھ میں آگے. لہذا قصد فرار نہیں پایا گیا, جب قصد فرار نہیں پایا گیا تو عورت وارثہ نہیں بنے گی. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام محمد اور امام زفر کا. جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک بے شک تعلیق صحت میں تھی لیکن یہ فعل ایسا ہے کہ عورت کا اس کے سوا چارہ ہی نہیں, تو لہذا یہاں عورت وارثہ بنے گی. اب اس کی دلیل بھی آگے صاحب ہدایہ بتلائیں گے کہ شیخین کی کیا دلیل ہے, عورت کیوں وارثہ بنے گی. بات تو امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ کی ظاہر معلوم ہوتی ہے بھائی, کہ خاوند نے تو تعلیق صحت میں کی ہے, بے شک وہ کام عورت کے لیے ضروری ہے لیکن تعلیق کب کی ہے؟ صحت میں, اور اس وقت تو عورت کا حق اس کے مال کے ساتھ وابستہ نہیں ہوا تھا. اب مرض الموت میں وہ فعل عورت کر رہی ہے, اب حق وابستہ ہو چکا ہے, لیکن اب تو خاوند نے تو کچھ بھی نہیں کیا, جو کچھ خاوند نے کیا تھا وہ تو صحت میں کیا تھا, مرض میں تو اس نے کچھ نہیں کیا. بات سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں وہ ان کان مما لا بد لہا منہ, اور اگر فعل و افعال میں سے ہے کہ عورت کا اس کے سوا چارہ نہیں ہے, فکذلک الجواب عند محمد رحمہ اللہ, تو بھی اسی طرح ہے جواب امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک, یعنی اسی طرح ہے مسئلہ کہ عورت وارثہ نہیں بنے گی. وہ قول زفر رحم اللہ, اور یہی قول امام زفر رحم اللہ کا بھی, لأنه لم يوجد من الزوج صنع, صنع صاد کے ساتھ ہے بھائی, صنع کا معنی ہے عمل, عمل. لأنه لم يوجد من الزوج صنع, کیونکہ خاوند کی طرف سے کوئی عمل نہیں پایا گیا, بعد ما تعلق حقها بماله, بعد اس کے کہ جب عورت کا حق خاوند کے مال کے ساتھ متعلق ہو گیا تھا. مرض الموت میں خاوند کے مال کے ساتھ عورت کا حق تو متعلق ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد تو خاوند نے کچھ نہیں کیا, یہ تو سابقہ تعلیق کا اثر ہے بھائی. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَرِثُ، اور جبکہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت وارثہ بنے گی، لِأَنَّ الزَّوْجَ أَلْجَأَهَا إِلَى الْمُبَاشَرَةِ، اس لیے کیونکہ خامن نے اس کو مجبور کر دیا ہے، الْجَأَ يُلْجِئُ کا معنی مجبور کرنا، اس لیے کیونکہ خامن نے اس عورت کو مجبور کر دیا ہے، إِلَى الْمُبَاشَرَةِ اس فعل کے کرنے پر، خامن نے ایسا فعل ذکر کیا ہے کہ عورت کو کرنا ہی پڑے گا، تعلیق بے شک صحت میں کی ہے لیکن یہ عمل تو کس وقت پایا جا رہا ہے، مرض الموت، لیکن عورت مجبور ہے اس کے کرنے میں، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں، اور جب کسی کو کسی کام پر مجبور کر دیا جائے تو وہ فعل مجبور کرنے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جیسے یہ وہ کر رہا ہے، جب کسی کو کسی فعل پر مجبور کر دیا جائے، اس پر زبردستی کی جائے، تو وہ فعل کس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، زبردستی کرنے والے کی طرف، جو زبردستی کر رہا ہے گویا وہ یہ فیل کر رہا ہے. مثلا دیکھو، ایک شخص آیا اور اس نے تلوار نکالی اور زید سے کہا کہ میں تمہیں تلوار سے قتل کر دوں گا یا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، الا یہ کہ تم عمر کے اس سامان کو آگ لگا دو اور اس کو جلا دو. اب زید اپنی جان بچانے کے لیے مجبور ہے، مجبوراً زید کو عمر کا سامان جلانا پڑا اور اس کی وجہ سے زمان آئے گا، لیکن زید تو مجبور تھا، تو زید کا عمل اس مجبور کرنے والے کی طرح منتقل ہو جائے گا، گویا وہ شخص جس نے تلوار پکڑی ہوئی ہے وہ جلا رہا ہے سامان کو، لہذا زمان اس پر آئے گا. بعد میں عمر زمان کس سے وصول کرے گا؟ اس زبردستی کرنے والے سے، یعنی مکرہ، مکرہ جس جو زبردستی کر رہا ہے وہ مکرہ سے اپنا زمان وصول کرے گا، مکرہ یعنی جس پر زبردستی کی گئی یعنی زید، اس سے وہ اپنا زمان وصول نہیں کرے گا. تو مکرہ کا فعل کس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے؟ مکرہ کی طرف. یہاں پر بھی خاون نے تعلیق بے شک صحت میں کی ہے، لیکن عورت کا ایسا فعل ذکر کیا ہے کہ اس کے سوا عورت کا چارہ ہی نہیں ہے، عورت کو وہ کام کرنا ہی پڑے گا، تو عورت مجبور ہو گئی اس کام کے کرنے پہ، اور مرض الموت میں وہ یہ کام مجبوری کے حالت میں وہ کر رہی ہے، اور مجبور کرنے والا کون ہے؟ خاون. تو عورت کا یہ فعل کس کی طرف منتقل ہو گیا؟ خاوند کی طرف، گویا خاوند یہ فعل کر رہا ہے، اور خاوند کا تو جو بھی فعل ہوتا تھا اس پر آپ نے پڑھا، خاوند اپنے فعل کے ساتھ طلاق کو معلق کرے گا تو وارثہ بنتی ہے عورت بھائی. تو یہاں بھی یہ عورت وارثہ بنے گی، کیونکہ مرض الموت میں یہ عورت یہ فعل کر رہی ہے، لیکن یوں سمجھیں گے یہ مرض الموت میں خاوند کر رہا ہے بھائی. عورت کا فعل کس کی طرف منتقل ہو جائے گا؟ مجبور کرنے والے یعنی خاوند کی طرف. اور خاوند کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ خاوند کا جو بھی فیل ہو، چاہے تعلیق صحت میں ہو اور شرط مرض میں، یا چاہے دونوں مرض میں ہو، اور چاہے فیل کے سوا چارہ ہو چاہے چارہ نہ ہو، تمام صورتوں میں عورت وارثہ بنتی ہے عدت کے اندر. تو یہاں بھی عورت کا فیل کس کی طرف منتقل ہو گیا؟ خاوند کی طرف، اور خاوند کے فیل میں تو عورت وارثہ بنتی ہے، تو یہاں بھی وارثہ بنی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وعند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی ترث، اور شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ عورت وارثہ بنے گی، لان الزوج الجاها الى المباشره، اس لیے کیونکہ خاوند نے اس عورت کو مجبور کر دیا ہے اس کام کے کرنے کی طرف. فینتقل الفعل الیہ، تو یہ فعل خاوند کی طرف منتقل ہو جائے گا، کانها آلۃ له، گویا کہ عورت اس کے لیے آلہ ہے. جیسے دیکھو، وہ شخص نے تلوار نکالی اور زید سے کہا کہ عمر کا سامان جلا دو، تو اس وقت یہ جو زید ہے، یہ جو مکرہ ہے، یہ آلے کے درجے میں ہوا. یہ کیا ہے؟ آلہ. آلہ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی کام سر انجام دیا جائے، مثلا قلم ہے لکھنے کا آلہ، تلوار ہے جنگ کرنے کا آلہ، گاڑی ہے سفر کا آلہ، تو وہ آلہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی کام کیا جائے. تو یہاں پر بھی جب زید جو ہے عمر کا سامان جلا رہا ہے مکرہ کے کہنے پر، تو زید صرف آلے کے درجے میں ہوا. کس کے؟ آلے کے درجے میں. اور اصل اعتبار آلے کا نہیں ہوتا، آلے کو استعمال کرنے والے کا ہوتا ہے. جیسے تلوار جنگ کا آلہ ہے، لیکن تلوار سے کوئی قتل کرے گا تو وہ اس آلے کو استعمال کرنے والا جو شخص ہے وہ مجرم ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ عورت یہ فعل کرنے پر مجبور ہے، یہ آلے کے درجے میں ہوئی، تو خاوند فعل کو کرنے والا شمار ہوگا بھائی. तो कहते हैं का अन्नहा आलतुन लहू, गोया के वो औरत खावंद के लिए आला है, कमा फिल इकराही, जैसे किसके अंदर होता है, इकराह के अंदर, जो मैंने मिसाल जिक्र कर दी कि किसी ने तलवार निकाली और जैद से कहा कि यह अमर का सामान जला दो, तो ये इकराह, इकराह का माना जबरदस्ती करना, तो जैद क्या हुआ मुकरह और वो शख्स क्या हुआ मुकरह, जबरदस्ती करने वाला। भाई मसला समझ में आ गया, हासिल कलाम क्या हुआ कि अगर तलाक को खावन ने मुअल्लक किया वक्त के साथ या अजनबी के फेल के साथ, तो इस सूरत में अगर तालीक और शर्त दोनों मरजुल मौत में है तो औरत वारिसा बनेगी, और अगर तालीक तो सेहत में है लेकिन शर्त मरजुल मौत में है तो फिर औरत वारिसा नहीं बनेगी, जबकि इमाम जुफर फरमाते हैं वारिसा बनेगी, लेकिन हम कहते हैं ये तालीक ततलीक बन गई मरजुल मौत में, ये हुक्मन ततलीक बनी है, कसदन ततलीक नहीं बनी, लिहाजा खावंद की तरफ से जुल्म का कसद नहीं पाया गया, जब जुल्म का कसद और इरादा नहीं पाया गया खावंद की तरफ से तो लिहाजा औरत वारिसा नहीं बनेगी। और अगर खावंद ने तलाक को मुअल्लक किया अपने फेल के साथ, और चाहे ये ऐसा फेल है जिसके सिवा चारा है या चारा नहीं है, और चाहे ये तालीक और शर्त दोनों मरजुल मौत में है या तालीक सेहत में है और शर्त मरजुल मौत में है, तमाम सूरतों का हुक्म एक ही है कि औरत वारिसा बनेगी इद्दत के दौरान। भाई और अगर खावन ने तलाक को मुअल्लक किया है औरत के फेल के साथ, तो अगर वो फेल ऐसा है कि उसके सिवा भी चारा है, औरत गुजारा कर सकती है उसके बगैर, और फिर वो औरत वो फेल करती है, तो फिर इस सूरत में तो चाहे तालीक सेहत में हो चाहे तालीक मरजुल मौत में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एक ही हुक्म है कि ये फेल तो इसके बगैर भी औरत का गुजारा हो सकता था, औरत ने किया है मालूम हो, वो अपना हक साकित करने पर खुद ही राजी है। भाई और अगर ऐसा फेल है कि औरत उसके करने पर मजबूर है, करने पर मजबूर है, तो फिर इस सूरत में चाहे तालीक और शर्त दोनों मरजुल मौत में हो, चाहे तालीक सेहत में हो और शर्त मरजुल मौत में हो, शेखैन रहमतुल्लाह के नजदीक दोनों सूरतों में औरत वारिसा बनेगी जी। दोनों सूरतों में अगर तालीक सेहत में है और शर्त कब है मरजुल मौत में है, लेकिन ऐसा फेल है औरत उसके करने पर मजबूर है, तो ये फेल किसकी तरह मुंतकिल हो गया खावन की तरफ, गोया खावन ये फेल कर रहा है, लिहाजा औरत वारिसा बनेगी। भाई खावन जब भी अपने फेल के साथ तलाक को मुअल्लक करता था औरत वारिसा बनती थी, तो यहां भी औरत वारिसा बनेगी, जबकि इमाम जुफर और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि चाहे ऐसा फेल हो जिसके सिवा चारा ना हो, लेकिन तालीक तो सेहत में की है, मरजुल मौत में तो खावन ने कुछ नहीं किया, लिहाजा इस सूरत में जब मरजुल मौत में वो शर्त पाई जा रही है तो औरत वारिसा नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए भाई, قال واذا طلقها ثلاثا وهو مريض ثم صح ثم مات لم ترث। सूरत है मसला ये, एक शख्स बहुत ज्यादा बीमार हो गया, लोगों ने कहा अब तो शायद इसका बचना मुश्किल है, मौत के आसार नमूदार हो रहे हैं, तो इस हालत के अंदर उस शख्स ने बीवी को तीन तलाकें दे दी, लेकिन फिर बाद में वो शख्स तंदुरुस्त हो गया, वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और फिर इद्दत के अंदर उसका इंतकाल हुआ, तो क्या यह औरत वारिसा बनेगी या नहीं जिसको उसने तीन तलाकें मरज की हालत में दी थी। तो हमारे फुकाहा फरमाते हैं कि जब वो शख्स तंदुरुस्त हो गया, मालूम हो वो मरजुल मौत ही नहीं था, जब मरजुल मौत नहीं था उसको भी सेहत शुमार करेंगे, जब सेहत की हालत में खावन बीवी को तीन तलाकें दे तो वह औरत वारिसा नहीं बनती, चाहे इद्दत के अंदर ही खावन का इंतकाल हो जाए, तो यहां भी यह औरत वारिसा नहीं बनेगी। तो कहते हैं قال امام محمد رحمه الله फरमाते हैं जामे सगीर में, واذا طلقها ثلاثا, और जब खावन ने बीवी को तीन तलाकें दी, वह हुआ मरीज, इस हाल में कि खावन मरीज है, सुम मसह, फिर खावन तंदुरुस्त हो गया, सुम माता, फिर खावन का इंतकाल हो गया इद्दत के अंदर अंदर ही, लम तरिस्त, औरत वारिसा नहीं बनेगी। وقال زفر رحمه الله ترث, امام زفر رحمه الله फरमाते हैं औरत वारिसा बनेगी, لانه قصد फिरारहीन अवका फिल मरजी, इसलिए क्योंकि खावन ने फिरार का इरादा किया, हीन अवका फिल मरजी, जिस वक्त मरज के अंदर उसने तलाक को वाकई किया, मालूम है उसका फिरार का इरादा था, वकद मात, और हाल यह है कि खावन इद्दत के अंदर ही मर गया है, वही अफिल इद्दती, और इस हाल में कि बीवी अभी इद्दत ही में है तो वह वारिसा बनेगी। वला किन्ना नकूलू, लेकिन हम कहते हैं अल मरजु इजा तअक्कबहू बुरउन, बुरउन का माना है तंदुरुस्त होना, अक्कब युअक्किबु का माना है पीछे आना। वला किन्ना नकूलू, लेकिन हम कहते हैं अल मरजु इजा तअक्कबहू बुरउन, के मरज जब उसके बाद तंदुरुस्ती आ जाए फहुआ बिमंजिलति सेहती, तो यह मरज भी सेहत ही के दर्जे में है। ले अन्नहु यनअदिमु बिही मरजुल मौती, क्योंकि इसकी वजह से मरजुल मौत मादूम हो गया, मरजुल मौत तो था ही नहीं। फतबयना अन्नहु ला हक लहा यतअल्लकु बिमालिही, तो मालूम हुआ कि औरत का कोई हक वाबस्ता नहीं हुआ था खावंद के माल के साथ। फला यसीरु ज़ौजु फारन, तो खावंद फार न हुआ, औरत का हक ही नहीं मुतालिक, क्योंकि यह मरजुल मौत ही नहीं था। तो जब हक मुतालिक नहीं हुआ और खावंद तलाक दे रहा है तो रजुल फार न बना। भाई रजुल फार तो कब बनेगा, जब औरत का हक मुतालिक हो चुका हो और फिर वो तलाक दे और वो मरजुल मौत में होता है। आगे देखिए, वलौ तल्लकहा फरदत वल अय्याजु बिल्लाह सुम्मा अस्लमत सुम्मा मात मिन मरज मौतिही वही फिल इद्दति लम तरिस वइन लम तरतद दबलता वाती बना ज़ौजिहा फिल जिमाई वरिसत। सूरत मसला यह, खावंद मरजुल मौत में मुबतला है और उसने बीवी को तीन तलाकें दे दी, और आपने पढ़ा है मरजुल मौत में बीवी को तीन तलाकें दे या तलाकें बाइन दे तो औरत इद्दत के अंदर वारिसा बनती है अगर खावंद का इंतकाल इद्दत के अंदर हो जाए। लेकिन यहां पर खावंद ने तलाक दे दी, औरत ने वारिसा बनना है, लेकिन इसी दौरान औरत मुर्तद्दा हो गई, अलअयाज़ु बिल्लाह, औरत क्या हुई, मुर्तद्दा हुई, फिर दोबारा मुसलमान हो गई, तो क्या अब भी वारिसा बनेगी या नहीं। कहते नहीं, हमने तो हुक्म लगा दिया था कि ये ज़ौजे फार है, ये भागने का इरादा कर रहा है, औरत वारिसा बनेगी, लेकिन औरत खुद ही मुर्तद्दा हो गई। और मुर्तद जो है वो आप पीछे पड़ चुके हैं, मुर्तद किसी का वारिस नहीं हो सकता भाई, मुर्तद किसी का वारिस नहीं हो सकता, क्योंकि मुर्तद में अहलियत ही नहीं है वारिस होने की, तो लिहाजा इसमें अहलियत ही खत्म हो गई, अब ये वारिसा नहीं बनेगी। फिर ये दोबारा मुसलमान हो गई, लेकिन एक दफा क्या हुआ, अहलियत खत्म हो गई थी, तो वो हुक्म खत्म हो चुका भाई, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलौ तल्लकहा फरतद्दत वल अय्याज़ु बिल्लाह, और अगर औरत को खावन ने तलाक बाइन या तीन तलाकें दी, फरतद्दत, फिर वो औरत मुर्तद्दा हो गई, वल अय्याज़ु बिल्लाह। हमारे उलमा का तरीका है भाई, जहां भी इर्तेदाद का जिक्र आता है तो उससे फिर अल्लाह की पनाह मांगते हैं भाई, क्योंकि इर्तेदाद ऐसी चीज है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की भी हिफाजत फरमाए, ये इर्तेदाद ऐसी चीज है, सारा कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया भाई। तो कहते हैं वो औरत मुर्तद हो गई, वल अय्याज़ु बिल्लाह, और हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं, सुम्मा अस्लमत, फिर वो औरत दोबारा मुसलमान हो गई, सुम्मा मात मिन मरज़ मौतिही, फिर मरज मौत से उस खावन का इंतकाल हो गया, वही फिल इद्दति, इस हाल में कि औरत अभी इद्दत में ही है, लम तरिस, ये वारिसा नहीं बनेगी। दूसरी सूरत, खावन ने मरजुल मौत में बीवी को तलाक बाइन दी या तीन तलाकें दे दी, और फिर हमने हुक्म लगा दिया कि मालूम हो ये ज़ौजे फार है, ये फिरार का इरादा करता है, ये बीवी वारिसा बनेगी अगर इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हो गया। फिर इसी बीवी ने खावंद की दूसरी बीवी के बेटे से गलत ताल्लुक कायम कर लिया, इस बीवी ने जिसको खावंद ने तलाक दी है, इसने खावंद की दूसरी बीवी के बेटे से गलत ताल्लुक कायम कर लिया, इसको कहते हैं मुतावअत। क्या कहते हैं, मुतावअत का माना है किसी का साथ देना, तो इस बीवी ने खावंद के बेटे का साथ दिया गलत फेल के अंदर, तो लिहाजा बीवी ने मुतावअत कर ली तीन तलाकों के बाद, और आप जानते हैं कि मुतावअत की वजह से हुर्मत मुसाहरत आ जाती है, यह औरत अब हमेशा हमेशा के लिए खावंद पर हराम हो गई, क्योंकि आपने मसला पढ़ा है कि जिना की वजह से भी हुर्मत मुसाहरत आ जाती है, तो ये औरत ने जब खावंद के बेटे से गलत ताल्लुक कायम किया तो ये खावंद के लिए बहू के दर्जे में हो गई, किसके दर्जे में, बहू के दर्जे में हो गई, और बहू तो इंसान पर हमेशा के लिए हराम होती है, लिहाजा ये औरत भी अब खावंद पर हमेशा के लिए हराम हो गई। तो क्या अब इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हो तो यह वारिसा बनेगी? यह औरत जिसको खावंद ने मरजुल मौत में तलाक बाइन या तीन तलाकें दी हैं और फिर इसी इद्दत के अंदर इसने खावंद के बेटे से मुतावात कर ली है, तो क्या अब यह वारिसा बनेगी अगर इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हो जाए? कहते हैं हां वारिसा बनेगी, हां यह वारिसा बनेगी। वजह यह कि पिछले मसले में इर्तेदाद था, मुर्तद होना वरासत के मुनाफी था, जो मुर्तद हो वो किसी का वारिस नहीं हो सकता, जबकि मुतावात की वजह से हुर्मत मुसाहरत आती है, यानी वो औरत खावंद की महरम बन गई, यानी हमेशा के लिए उस पर हराम हो गई। महरम वो औरत जो किसी पर हमेशा के लिए हराम हो उसको क्या कहते हैं? महरम। तो ये जो औरत ने खावंद के बेटे से नाजायज ताल्लुक कायम किया तो खावंद पर हमेशा के लिए हराम बन गई, यानी महरम बन गई, और महरमियत महरम होना ये वारिस होने के मुनाफी नहीं है। महरम वारिस बनते हैं या नहीं? एक शख्स का इंतकाल होता है उसकी मां भी वारिस होगी हालांकि मां महरम है, उसकी बेटी भी वारिस होगी हालांकि बेटी भी क्या है? महरम। मानूमा महरम होना वारिस होने के मुनाफी नहीं, महरम होना निकाह के मुनाफी है। महरम हो तो उसे निकाह नहीं हो सकता, तो महरम होना वरासत के मुनाफी नहीं। तो इस औरत ने जो मुतावात की है उसकी वजह से महरमियत आई है, लेकिन महरमियत वारिस होने के मुनाफी नहीं, लिहाजा वारिस बनेगी ये भाई। तो कहते हैं वह इल्लम तरतद्दा बलतावाती बना ज़ौजी हाफिल जिमाई, और अगर यह औरत मुर्तद नहीं हुई बलतावाती बना ज़ौजी हा बल्कि इसने साथ दिया अपने खावंद के बेटे का फिल जिमाई जिमा में वरिसत, तो यह औरत वारिसा बनेगी। वजहुल फर्की, इन दोनों मसलों में फर्क भाई कि मुर्तद होती थी तो वारिसा ही नहीं बनती और मुतावत करती है तो वारिसा बनती है, उसकी वजह। तो इन दोनों में क्या फर्क है वो अब जिक्र करेंगे। मैंने बयान कर दिया कि मुर्तद होना वारिस होने के मुनाफी है लेकिन महरमियत वारिस होने के मुनाफी नहीं है। वजहुल फर्क की, तो इन दोनों में फर्क की वजह यह है कि अन्नहा बिर्रिद्दती अब तलत अहली यतल इरसी, कि इस औरत ने मुर्तद्दा होने की वजह से अब तलत अहली यतल इरसी, इसने वारिस होने की अहलियत को बातिल कर दिया, अब इसमें वारिस होने की अहलियत ही न रही। ईदिल मुर्तद दुला यरिसु अहदन, इसलिए क्योंकि मुर्तद किसी का वारिस नहीं होता। वला बका अलहू बिदूनिल अहलियती, और वरासत तो बाकी नहीं रह सकती बगैर अहलियत के। अहलियत होगी तो वरासत भी होगी, अहलियत नहीं तो वरासत भी नहीं, तो मुर्तद्दा में अहलियत ही न रही तो वहां वो वारिसा भी नहीं बनेगी। वबिल मुतावाति मा अब तलतिल अहलियता, और मुतावात की वजह से इसने वरासत की अहलियत को बातिल नहीं किया। लिअन अल महरमी यतला युनाफिल इरसा, इसलिए क्योंकि महरम होना यह मुनाफी नहीं है इर्स के, यानी वारिस होने के। महरमियत निकाह के मुनाफी है, वारिस होने के मुनाफी नहीं है भाई। तो कहते हैं लिअन अल महरमी यतला युनाफिल इरसा, और महरम होना यह वारिस होने के मुनाफी नहीं है। वह अल बाकी, और वारिस होना तो अभी भी बाकी है लिहाजा वारिसा बनेगी। बिखिलाफी मा इदा तावात, दूसरी सूरत, यह तो सूरत ही खावन ने तलाक बाइन या तीन तलाकें दी हैं मरजुल मौत में और फिर औरत ने मुतावात की है। अगर इसके बजाय मरजुल मौत में खावन ने कोई तलाक अभी नहीं दी, औरत ने मुतावात कर ली, पहले तलाकें मुकद्दम थी मुतावात पर, तवज्जो है, पहले तलाकें क्या थी? मुकद्दम थी मुतावात पर। अब मुतावात को जरा पहले ले आओ कि औरत ने मुतावात कर ली, जब औरत ने मुतावात पहले कर ली, खावन ने तलाकें नहीं दी थी लेकिन महरमियत आ गई, जब महरमियत आ गई अब याद रखो इस सूरत में यह औरत वारिसा नहीं बनेगी। भाई क्यों नहीं वारिसा बनेगी? कहते हैं इसलिए क्योंकि यहां पहले जो जुदाई आई थी वो खावन की तलाकों की वजह से आई थी। खावन ने क्या किया था? तलाकें दी थी तो जुदाई आ चुकी थी, उस जुदाई के बाद मुतावात की है औरत ने और उसे महरमियत आई है, लेकिन जुदाई तो उससे पहले ही आ चुकी थी। लेकिन यहां पर अभी खावंद ने तलाकें वगैरह नहीं दी, औरत ने मुतावात कर ली, तो इस मुतावात की वजह से क्या आ गई? महरमियत आ गई। तो जुदाई किसकी तरफ से आई? औरत की तरफ से आई। जब औरत की तरफ से जुदाई आ गई है, मालूम हो इसने खुद ही अपना हक साकित कर दिया। तो कहते हैं बेखिलाफ इमा इदा तावात फी हाल कियाम इन निकाह, बखिलाफ उस सूरत के जब औरत मुतावत कर ले निकाह कायम होने की हालत में, ले अन्नहा तुस्बितुल फुरकता, इसलिए क्योंकि वह औरत खुद जो है जुदाई को साबित कर देती है, निकाह के अंदर मुतावत कर रही है तो वो खुद जुदाई को साबित कर देती है। फतकूनु राज़ियतन बिबुतलान इस सबबी, फतकूनु राज़ियतन, तो वो राजी है बिबुतलान इस सबबी, विरासत के सबब के बातिल होने पर, वो खुद विरासत के सबब के बातिल होने पर राजी है। वबाद तलकात सलासिला तुस्बितुल हुरमता बिल मुतावाती, जबकि पहले मसले में तीन तलाकों के बाद ला तुस्बितुल हुरमता, औरत जो है वो हुरमत को साबित नहीं कर रही, बिल मुतावाती, किसकी वजह से, मुतावत की वजह से, ले तकद्दुमिहा अलैहा, इसलिए क्योंकि हुरमत जो है वो तो मुकद्दम हो चुकी है मुतावत पर, हुरमत तो पहले ही आ चुकी है, तो फफ्तारा का, तो ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। भाई बात समझ में आ गई, आगे देखिए भाई, वमन कज़फ़ अमरा अतहू वह सहीह वला अनफिल मरज़ी वरिसत, सूरत है मसला ये, एक शख्स ने बीवी से लियान किया, भाई लियान, याद रखो कोई आम आदमी किसी अजनबी या औरत या किसी अजनबी मर्द पर जिना का इल्जाम लगाए तो शरीयत ने उनको हक दिया है, जिन पर इल्जाम लगाया गया है वो इसको काजी के पास ले जा सकते हैं और काजी के पास जाकर मुकदमा करें कि इसने हम पर जिना का इल्जाम लगाया है। काजी उस शख्स को तलब करेगा और उससे कहेगा कि तुमने जिना जैसा अजीम इल्जाम इस मुसलमान मर्द या औरत पर लगाया है, अब चार गवाह जिना पर पेश करो। अगर वो चार गवाह पेश कर दे फिर तो उसकी जान छूट जाएगी और उनका उनको सजा मिलेगी जिना करने वालों को, लेकिन अगर वो चार गवाह पेश न कर सका तो फिर इस पर हद कजफ लगेगी, इसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे कि इसने एक पाकदामन मुसलमान मर्द या औरत पर जिना का इल्जाम लगाया। भाई तो यह तो था अगर कोई शख्स किसी अजनबी मर्द या औरत पर जिना का इल्जाम लगाए, लेकिन अगर खावंद अपनी बीवी पर जिना का इल्जाम लगाए, अब खावंद चार गवाह कहां से ला सकता है? भाई तवज्जो है, अगर उसने बीवी को जिना करते हुए देखा या किसी आदमी को उसके पास आते जाते हुए देखा, वो बेचारा तो कहीं से गवाह नहीं ला सकता, तो फिर इस मसले के अंदर शरीयत ने लियान मुकर्रर कर दिया। और लियान ये कि मसलन खावंद काजी के पास चला जाता है या बीवी पर जिना का इल्जाम लगाया है और बीवी काजी के पास चली गई, तो काजी दोनों को तलब करेगा और फिर लियान करवाएगा। लियान याद रखो, लियान यह है कि मर्द चार शहादतें देगा, चार गवाहियां देगा और हर गवाही के साथ कसम भी खाएगा और यूं कहेगा कि मैं गवाही देता हूं वल्लाह काजी साहब, मैंने इस औरत पर जो जिना का इल्जाम लगाया है मैं उसमें सच्चा हूं। फिर कहेगा कि मैं गवाही देता हूं वल्लाह मैंने इस औरत पर जो जिना का इल्जाम लगाया है मैं इसमें सच्चा हूं। इस तरह चार शहादतें देगा और हर शहादत के साथ कसम भी खाएगा। भाई और पांचवीं मर्तबा कहेगा कि अगर मैं झूठा हूं, ये जो मैंने इस औरत पर जिना का इल्जाम लगाया है तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो गई। ये चार शहादतें देगा और पांचवीं मर्तबा यूं कहेगा कि अगर ये जो मैंने इस औरत पर जिना का इल्जाम लगाया है इसमें अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो गई। फिर उसके बाद काजी औरत की तरफ मुतवज्जे होगा, अब वो औरत चार शहादतें देगी और यूं कहेगी कि मैं गवाही देती हूं वल्लाह इस शख्स ने मुझ पर जो जिना का इल्जाम लगाया है इसमें यह झूठा है। फिर कहेगी मैं गवाही देती हूं कि वल्लाह इस शख्स ने मुझ पर जिना का जो इल्जाम लगाया है यह इसमें झूठा है। चार मर्तबा इस तरह चार गवाहियां देगी, हर गवाही के साथ कसम भी खाएगी और पांचवीं मर्तबा वो औरत कहेगी कि अगर इस शख्स ने मुझ पर जिना का जो इल्जाम लगाया है इसमें अगर यह सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। बात समझ में आ गई। तो खावन जो है पांचवीं मर्तबा में अपने लिए लानत को जिक्र करेगा और औरत अपने लिए गजब को जिक्र करेगी। उलमा ने इसमें नुक्ता बयान किया है कि ये औरत के लिए गजब का जिक्र क्यों है, लानत का जिक्र क्यों नहीं है, तो वजह यह कि औरतें चूंकि एक दूसरे पर लानत भेजती रहती हैं, उनकी आदत ही इस तरह होती है अक्सर, तो लानत उनके नजदीक कोई बड़ी चीज ही नहीं है। लिहाजा इसलिए वो लानत का लफ्ज जिक्र नहीं करेंगी बल्कि अल्लाह के गजब का जिक्र करेंगी कि अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझ पर अल्लाह का गजब हो भाई। और फिर यह भी याद रखो लियान के बाद फिर काजी दोनों में जुदाई करवा देता है, काजी दोनों में जुदाई करवा देता है, और यह जुदाई भी तलाके बाइन के हुक्म में है। तो यह है लियान भाई, यह क्या है लियान। तो अब सूरत है मसला यह, खावन ने बीवी पर जिना का इल्जाम लगा दिया और फिर दोनों को काजी के पास जाकर लियान करना पड़ा। तो खावन ने जिना का इल्जाम लगाया और फिर काजी के पास जाकर लियान करना पड़ा। तो अगर तो ये खावन ने जो इल्जाम लगाया था वो भी मरजुल मौत में था और लियान भी मरजुल मौत में था, फिर तो कस्दे फिरार पाया गया, फिर तो कस्दे फिरार पाया गया, तो लिहाजा औरत वारिसा बनेगी भाई। और अगर खावन ने इल्जाम लगाया था सेहत की हालत में और लियान करना पड़ा मरजुल मौत में, तो फिर इस सूरत में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि औरत वारिसा नहीं बनेगी। इद्दत के अंदर भी खावन का इंतकाल हो जाए तो यह औरत वारिसा नहीं बनेगी। वजह यह कि लियान में पहले खावन चार गवाहियां वगैरह जिक्र करता है, फिर बाद में औरत जिक्र करती है, तो आखिरी फेल किसका हुआ? औरत का। और फिर उसके बाद काजी दोनों में जुदाई करवा देता है, तो गोया जुदाई का सबब औरत बनी है। आखिरी लियान किसने किया? औरत ने। तो लिहाजा जुदाई का सबब औरत बनी है, और जब जुदाई का सबब औरत बनी है मालूम हुआ वो खुद अपना हक बातिल करने पर राजी है, लिहाजा वो वारिसा नहीं बनेगी। जबकि शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि ये बेशक आखिर में लियान औरत ने किया है लेकिन औरत मजबूर है इसके करने में। भाई क्यों मजबूर है? वजह यह कि खावन ने उस पर जिना का इल्जाम लगाया है, अगर वो अपनी सफाई पेश नहीं करेगी तो सारी जिंदगी के लिए उसके लिए ताना बन जाएगा भाई। तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपने आप को तानों से बचाने के लिए औरत मजबूर है ये लियान करने पर। तो जब ये मजबूर है तो औरत का फेल किसकी तरह मुंतकिल हो जाएगा? खावन की तरफ। गोया खावन ये फेल कर रहा है, और जब खावन एक फेल करे मरजुल मौत में तो फिर उस सूरत में औरत वारिसा बनती थी, तो यहां भी औरत वारिसा बनेगी भाई। तो कहते हैं वमन कज़फ इमरअतहु हुआ हुआ सहीहुन, और जिस शख्स ने अपनी बीवी पर तो जिना की तोहमत लगाई वह हुआ सहीहुन, इस हाल में कि शख्स तंदुरुस्त था यानी सेहत की हालत में इसने इल्जाम लगाया है, वलाअन फिल मरज़ी और लियान किया है मरज के अंदर, वरिसा तो ये औरत वारिसा बनेगी। शेखैन फरमाते हैं वकाल मोहम्मद रहमहुल्लाहु ला तरिसु, और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि औरत वारिसा नहीं बनेगी, व इन कानल कज़्फ़ फिल मरज़ी और अगर कज़्फ़ भी मरज में था यानी जीना का इल्जाम भी मरज ही में था, तो वरिसत हुफी कौलिहिम जमीआ तो औरत वारिसा बनेगी इन सब के कौल में यानी हमारे तीनों इम्मा के नजदीक। वहादा मुलहकुम बिताअलीक बिफ़िअलिल्ला बुद्दलहा मिनहु, और ये जो लियान है इसको मिलाया गया है बिताअलीक बिफ़िअलिन उस फेल की तालीक के साथ, ला बुद्दलहा मिनहु के जिसके सिवा चारा ना हो। लियान को भी किन अफाल के साथ मिलाया गया है? जिनके सिवा चारा ना हो, और जिसके सिवा चारा नहीं है वो फेल खावंद की तरह मुंतकिल हो जाता है भाई। तो कहते हैं वहादा मुल हकुम भी ताली की भी फेल ला बुद्दल हामिन हो, और इसको मिलाया गया है उस फेल की ताली के साथ कि जिसके सिवा चारा ना हो, इद ही अमुल जातुन इलल खुसूमती इसलिए क्योंकि यह औरत मजबूर है इलल खुसूमती खुसूमत पर यानी झगड़ा और मुकदमा करने पर, लिदफ़ आर जिना अन नफ्सिहा ताकि अपनी जात से जिना के आर को दूर कर सके, वक़द बैन नल वजह फी और तहकीक हमने इसके अंदर वजह बयान कर दी कि औरत क्या है मजबूर है, तो औरत का फेल किसकी तरह मुंतकिल हो जाएगा? खावन की तरफ, और खावन का फेल तो मरजुल मौत में पाया जाए तो फिर औरत वारिसा बनती थी, तो यहां ये वारिसा बनेगी। ये वो सूरत है जब इल्जाम सेहत में लगाया और लियान मरज में किया है, और अगर इल्जाम भी मरजुल मौत में लगाया है फिर तो बिल इतफाक वो वारिसा बनेगी भाई। व इन आलम रअतहु व हुवा सहीह, अब इला का जिक्र आ गया। ईला याद रखो, ये आगे साहिब हिदायत भी बयान फरमाएंगे, ईला का अलग बाब आ जाएगा। ईला इसे कहते हैं कि कोई शख्स अपनी बीवी के पास चार माह तक न जाने की कसम खा ले कि वल्लाह मैं चार माह तक तुमसे सोहबत नहीं करूंगा, तो चार माह तक सोहबत न करने की कसम उठा ले तो ये जुल्मे कबीर है भाई, लिहाजा इसकी शरीयत ने सजा मुकर्रर की है। चार माह से कम की भी खावंद कसम उठाए वो भी जुल्म है भाई, लेकिन उसकी शरीयत ने कोई सजा मुकर्रर नहीं की। लेकिन अगर कोई शख्स चार माह या इससे ज्यादा तक बीवी के पास न जाने की कसम उठा ले तो यह जुल्म कबीर है, बाकायदा शरीयत ने इसकी सजा मुकर्रर की है कि या तो इस शख्स को अपनी कसम तोड़ना पड़ेगी और बीवी से सोहबत करना पड़ेगी और फिर इसको कसम का कफारा देना पड़ेगा, और अगर ये बीवी से सोहबत नहीं करता और वो वक्त गुजर जाता है तो चार महीने के बाद खुद ब खुद तलाके बाइन हो जाएगी, खुद ब खुद तलाके बाइन हो जाएगी। बात समझ में आ गई। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीन युलून मिन निसाइहिम, और वो लोग जो ईला कर लेते हैं अपनी बीवियों से, यानी चार महीने तक अपनी बीवियों के साथ सोहबत न करने की कसम खा लेते हैं, तो उन लोगों के लिए तरबुसु अरबाती अशहुरिन, उनके लिए चार माह का ठहरना है, यानी चार माह की मोहलत है। इस मोहलत में आ सकते हो वापस रुजू कर लो, वरना बीवी हाथ से निकल जाएगी। तो उनके लिए तरबुसु अरबाती अशहुरिन, चार माह की मोहलत है। फइन फाऊ, बस अगर वो रुजू कर लें, फइन अल्लाह गफूर रहीम, तो अल्लाह बड़े मगफिरत करने वाले और निहायत रहम करने वाले हैं। तो इसको ईला कहते हैं। अब सूरत मसला ये, खावन ने बीवी से ईला कर लिया, क्या कर लिया, ईला, चार माह या इससे ज्यादा बीवी किससे सोहबत न करने की कसम खा ली, तो या तो ईला भी मरजुल मौत में होगा और शर्त भी मरजुल मौत में, यानी चार माह भी पूरे हो गए मरजुल मौत में ही, तो फिर इस सूरत में तो ये औरत वारिसा बनेगी, क्योंकि जब ईला मरजुल मौत में कर रहा है मालूम कस्दे फिरार पाया जा रहा है, जैसे पिछले मसले में इल्जाम मरजुल मौत में लगाया था तो कस्दे फिरार पाया गया था। बात समझ में आ गई। और अगर सेहत की हालत में ईला किया और फिर वो वक्त पूरा जब हुआ, तो चार माह जब पूरे हुए तो खावंद मरजुल मौत में मुब्तला है, तो फिर इस सूरत के अंदर वारिसा नहीं बनेगी, क्योंकि कस्दे फिरार नहीं पाया गया। तो कहते हैं वह इन आलम रता हुआ हुआ सही हुन, और अगर किसी ने अपनी बीवी से ईला किया इस हाल में कि वो तंदुरुस्त है, सुम बानत बिल ईला वह हुआ मरीज उन, फिर वह औरत उससे जुदा हो गई ईला की वजह से, वह हुआ मरीज उन, इस हाल में कि यह शख्स मरीज है यानी मरजुल मौत में मुबतला है, जुदा हो गई, क्या माना, यानी चार महीने पूरे हो गए, चार महीने जैसे ही पूरे होंगे खुद ब खुद जुदाई आ जाएगी और तलाके बाइन हो जाएगी। तो कहते हैं सुम बानत बिल ईला, फिर वह औरत उससे जुदा हो गई ईला की वजह से, वह हुआ मरीज उन, इस हाल में कि यह मरीज है, लम तरिस, तो यह औरत वारिसा नहीं बनेगी, क्योंकि यह रजुल फार नहीं है भाई, क्योंकि ईला इसने सेहत में किया था। वह इन कान अल ईला वो ऐसन फिल मरज, और अगर ईला भी मरज ही में था और शर्त भी मरज ही में पाई गई तो फिर वारिसा बनेगी। वह इनकान अल ईला वन फिल मरजी, और अगर ईला भी मरज में था वारिसा, तो यह औरत वारिसा बनेगी। लियान अल ईला अफी माना तालीक तलाक भी मुजी अरबाती अशहरिन खालिन अनिल विका। भाई याद रखो, आपको साहिब हिदायत बतलाएंगे कि ईला जो है ये तलाक को मुअल्लक करना है वक्त के साथ। ईला में क्या किया जा रहा है, ये ईला इसी दर्जे में है, ईला इसी दर्जे में है, गोया खावंद अपनी बीवी की तलाक को मुअल्लक कर रहा है वक्त के साथ। और कैसा वक्त, ऐसे चार महीने जो सोहबत से खाली हों। किसके साथ मुअल्लक कर रहे हैं अपनी बीवी की तलाक को, वक्त के साथ। क्या माना वक्त, यानी ऐसे चार महीने जो सोहबत से खाली होंगे। और वक्त के साथ खावंद अपनी बीवी की तलाक को मुअल्लक करता था तो आपने पीछे मसला पढ़ा था, इजाजा अरासु शहरी, जब उस महीने का आगाज आ जाए तो तुझे तलाक है। तो अगर सेहत की हालत में तालीक की है और शर्त जो है वो मरज की हालत में पाई गई तो औरत वारिसा नहीं बनती, लेकिन अगर तालीक और शर्त दोनों मरजुल मौत में है तो औरत वारिसा बनती है। यहां भी इसी तरह है, अगर ईला और शर्त दोनों मरजुल मौत में है तो औरत वारिसा बनेगी, और अगर ईला सेहत में है और शर्त मरजुल मौत में है तो औरत वारिसा नहीं बनेगी। तो कहते हैं लि अन अल ईला अफी माना तालीक तलाक, इसलिए क्योंकि ईला इस माना में है कि तलाक को मुअल्लक किया जाए भी मुजी ये अरबाती अशहूरिन चार महीनों के गुजरने के साथ, ऐसे चार महीने खालिन अनिल विकाई जो सोहबत से खाली हों। विका ये जिमा को कहते हैं सोहबत करने को। तर्जमा समझ में आया फिर देख लीजिए लि अन अल ईला अफी माना तालीक तलाक भी मुजी ये अरबाती अशहूरिन खालिन अनिल विकाई, इसलिए क्योंकि ईला जो है वो इस माना में है कि तलाक को मुअल्लक कर दिया जाए चार ऐसे महीनों के गुजरने के साथ जो जिमा से खाली हों। फयकून मुलहकम बिताली भी मजी इल वक्ती, तो लिहाजा ये ईला जो है ये मुलहक होगा बिताली भी मजी इल वक्ती, वो जो वक्त के आने के साथ तालीक थी उसके साथ ये मुलहक होगा और वही वाला हुक्म यहां भी आएगा। वकद जकरना वजह, और तहकीक उसकी वजह हम पीछे जिक्र कर चुके हैं भाई। قال رضي الله عنه والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ترث به في جميع الوجوه। साहिब हिदाया फरमाते हैं और वो तलाक यमलिकु फीह रजाता जिसमें खावंद रुजू का मालिक होता है, यानी तलाक रजई। तलाक रजई में तो औरत वारिसा बनेगी भाई, इद्दत के अंदर अगर खावंद का इंतकाल हो जाए तो औरत वारिसा बनेगी क्योंकि तलाक रजई में निकाह हर एतबार से बाकी है। قال صاحب हिदाया फरमाते हैं व तलाक الذي يملك فيه الرجعة, और वो तलाक जिसके अंदर खावन रुजू का मालिक होता है, तरिसु बिही फी जमीअ الوجوه, तो औरत उसकी वारिसा बनेगी तमाम सूरतों में। लिमा बैन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि अन्नहु ला युज़ीलु निकाह, कि तलाक रजई निकाह को खत्म नहीं करती। हत्ता यहिल्लुल वत्उ, भाई याद रखना यहां पर भी हत्ता नसब नहीं देगा क्योंकि हत्ता के नसब की शराइत यहां पर पूरी नहीं, तो यहिल्लू को मरफू पड़ेंगे क्योंकि हत्ता के नसब देने के लिए मैंने बतलाया था आपको कि दो शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि हत्ता का माबाद वो मुस्तकबिल होना चाहिए हत्ता के माकबल की तरफ निस्बत करते हुए, और दूसरी शर्त यह कि वो हत्ता सबबियत या गाया का फायदा दे। हत्ता सबबियत का फायदा दे यानी माकबल को सबब होना चाहिए हत्ता के माबाद के लिए, या हत्ता गाया का फायदा दे यानी हत्ता का माबाद गाया होना चाहिए माकबल के लिए, यानी हत्ता के माबाद पर हत्ता के माकबल की इंतहा हो रही हो गई, तो ये शर्तें यहां नहीं पूरी, लिहाजा यहां यहिल्लू पर रफा पड़ेंगे। हत्ता यहिल्लुल वतु, यहां तक के खावंद के लिए वती भी हलाल होती है, वती भी हलाल होती है तलाक रजई के बाद इद्दत के दौरान खावंद के लिए वती भी हलाल होती है, और वो वती करेगा तो रुजू हो जाएगा। वती कर सकता है लेकिन जब करेगा तो रुजू हो जाएगा। बात समझ में आ गई। फकान सबब कायमन, तो वरासत का सबब यानी निकाह मौजूद है। वकुल्लु मा दकरना अन्नहा तरिसु, और हर वो सूरत जिसमें हमने जिक्र किया कि औरत वारिसा बनेगी। इन्नमा तरिसु इज़ा माता वहिया फिल इद्दति, ये औरत उसी वक्त वारिसा बनेगी जिस वक्त खावंद का इंतकाल हो, इस हाल में कि औरत इद्दत में हो। वक़द बैन्ना, और तहकीक ये भी हम बयान कर चुके, ये जितनी सूरतें हमने जिक्र की कि औरत वारिसा बनेगी ये कब है, जब इद्दत के अंदर खावंद का इंतकाल हो, वरना औरत वारिसा नहीं बनेगी। ये भी पीछे बिल्कुल बाब की पहली सतर में ही साहिब हिदाया ने बयान किया था। आगे देखिए बाब उर रजाती, ये बाब है रुजू के बयान में। व इजा तल्लकर रजुल उम्रतहु तत्लीकतन रजईयतन औ तत्लीकतैनी, और जब तलाक दे दी एक शख्स ने अपनी बीवी को तत्लीकतन रजईयतन एक रजई तलाक औ तत्लीकतैनी या दो रजई तलाकें, भाई रजई तलाकें दो तक ही हो सकती हैं, तीन तलाकें दे दी तो फिर रुजू की कोई सूरत नहीं है भाई, तीन तलाकों पर हुर्मत मुगल्लजा आ जाती है। अब वो औरत किसी और खावन से निकाह करे और फिर जिंदगी में कभी उसका इंतकाल हो या वो तलाक दे दे तो फिर पहला खावन निकाह कर सकता है, वैसे निकाह की कोई सूरत नहीं है भाई। तो कहते हैं वैदा तल्लकर रजुल उम्रअतहु तत्लीकतन रजईयतन औ तत्लीकतैनी, जब किसी शख्स ने अपनी बीवी को एक तलाक रजई या दो तलाक रजई दे दी, फलहू अन युराजिअहा फी इद्दतिहा, तो खावन के लिए जायज है कि वह औरत से रुजू कर सकता है उसकी इद्दत में। रजियत बिदालिका औ लम तर्ज़ा, औरत इस पर राजी हो या राजी न हो, यह रुजू करना यह खालिस खावन का हक है औरत की रजामंदी का इसमें कोई दखल नहीं। जैसे तलाक देना खालिस खावंद का हक है, औरत की रजामंदी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। खावंद तलाक देगा, औरत राजी हो या ना हो तलाक हो जाएगी। इसी तरह इद्दत के अंदर खावंद रुजू करेगा जबकि तलाक रजाई दी हो, तो इद्दत के अंदर खावंद रुजू करेगा तो रुजू हो जाएगा, चाहे औरत राजी हो चाहे राजी ना हो। भाई दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं लिकौली ही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, फअमसिकूहुन्ना बिमारूफ, फअमसिकूहुन्ना बिमारूफ, बस इनको रोक लो बिमारूफ इन अच्छे तरीके से। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं भाई, वह इदा तल्लक तुमुन्निसा, और जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दे दो, फबलगना अजलहुन्ना, फिर ये औरतें अपनी मुद्दत को पहुंच जाएं, यानी मुद्दत के पहुंचने के करीब हो जाएं, यानी मुद्दत तक अगर पहुंच गई, इद्दत पूरी हो गई, फिर तो रुजू नहीं हो सकता। तो फबलगना अजलहुन्ना का क्या माना, अपनी मुद्दत के पहुंचने के करीब हो जाएं। बात समझ में आ गई, यानी इद्दत के पूरा होने से पहले की बात हो रही है। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वइदा तल्लक्तुमुन्निसा, और जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दे दो, फबलगना अजलहुन्ना, तो ये अपनी मुद्दत के पहुंचने के करीब हो जाएं, यानी अभी इद्दत बाकी है, फअमसिकूहुन्ना बिमारूफिन, तो इनको अच्छे तरीके से रोक लो, और फारिकूहुन्ना बिमारूफिन, या इनको अच्छे तरीके से जुदा कर दो, वह अशहीदू जवाय अदलिम मिनकुम, और दो काबिले एतमाद आदमियों को इस पर गवाह बना लो, दो काबिले एतमाद आदमियों को इस पर, इस रुजू पर गवाह बना लो, इस रुजू पर गवाह बना लो, या इस जुदाई पर गवाह बना लो। और याद रखो ये गवाह बनाना इंदना कोई लाजिम नहीं है, हां ये मुस्तहब है, खावन ने अगर रुजू किया है तो मुस्तहब है दो आदमियों को गवाह बना ले ताकि बाद में औरत इनकार न करे। भाई तो कहते हैं लिकौलिही ताला फअमसिकूहुन्ना बिमारूफिन, बवजह अल्लाह ताला के इस कौल के, क्या अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, फअमसिकूहुन्ना बिमारूफिन, बस तुम रोक लो उनको अच्छे तरीके से, मिन गैरी फसलिन, इसमें कोई फसल और कोई फर्क नहीं किया गया, औरत की रजामंदी हो या औरत की रजामंदी न हो उसमें फर्क नहीं किया गया। मालूम हुआ ये खावन का इख्तियार है, औरत चाहे राजी हो या राजी न हो वो रुजू कर सकता है। वला बुद्दा मिन कियामिल इद्दती, और इद्दत का कायम होना जरूरी है, इद्दत का मौजूद होना जरूरी है, लिअन्न रजअत इस्तिदामतुल मिल्की, इसलिए क्योंकि रुजू करना इस्तिदामतुल मिल्की, इस्तिदामत का माना है बरकरार रखना, इस्तदामा यस्तदीमु का माना किसी चीज को बरकरार रखना, इस्तदामत ये दवाम से है भाई, और सीन तलब के लिए है, यानी दवाम को तलब करना, एक चीज के दवाम को तलब करना यानी उसको बरकरार रखना। तो कहते हैं लिअन्न रजअत इस्तदामतुल मिल्की, इसलिए क्योंकि रुजू करना ये मिल्कियत को बरकरार रखना है। याद रखो हमारे नजदीक रुजू जो है मिल्कियत को बरकरार रखने का नाम है। रुजू में इंसान क्या करता है, अपनी मिल्कियत को बरकरार रखता है। तो हमारे नजदीक रुजू इस्तिदामत मिल्क का नाम है, जबकि इमाम शाफी हमारा के नजदीक रुजू इब्तिदाए निकाह के दर्जे में है। किस दर्जे में है, इब्तिदाए निकाह के दर्जे में है जी। ये आगे साहिब हिदाया भी जिक्र फरमाएंगे भाई। तो कहते हैं लिअन्न रजअत इस्तिदामतुल मिल्की, इसलिए क्योंकि रुजू जो है वो मिल्कियत को बरकरार रखने का नाम है। अला तरा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु सुम्मिया इमसाकन, के इसको कुरान में इमसाक कहा गया है। फअमसिकूहुन्ना बिमारूफ, इस इमसाक से क्या मुराद है, रुजू, और इमसाक का क्या माना होता है, रोक लेना बाकी रखना। इमसाक का क्या माना है, रोक लेना और बाकी रखना, और बाकी रखना वहीं होगा जहां मिल्कियत तो हो, अगर मिल्कियत खत्म हो जाए फिर तो बाकी रखने वाला माना नहीं हो सकता भाई। तो इद्दत के अंदर अंदर ही मिल्कियत होती है, लिहाजा इद्दत के अंदर अंदर रुजू हो सकता है, इद्दत गुजर गई तो मिल्कियत खत्म, अब तो इमसाक पर अमल नहीं हो सकता। तवज्जो भी है कि नहीं, इमसाक का क्या माना, रोक लेना, और रोकने का क्या माना है, मिल्कियत अभी मौजूद है बाकी है, और रोकना कब होगा? मिल्कियत के अंदर ही होगा। और मिल्कियत कब तक होती है? इद्दत तक। लिहाजा जब इद्दत गुजर गई फिर तो बिल इत्तेफाक मिल्कियत खत्म हो गई, फिर इमसाक नहीं पाया जा सकता भाई। तो कहते हैं अल्लाह तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु सुम्मिय इमसाकन, कि इस रुजू जो है इसको इमसाक कहा गया है कुरान के अंदर। वहुअल इबकाउ, और इमसाक किसे कहते हैं? इबका को कहते हैं एक चीज को बाकी रखना। वह इन नमा यतहक्कुल इस्तिदामतु फिल इद्दती, और ये बरकरार रखना इद्दत के अंदर ही पाया जा सकता है। लिअन्नहु ला मिल्का बादन क़िज़ाइहा, इसलिए क्योंकि इद्दत के गुजरने के बाद तो कोई मिल्कियत नहीं होती। वर्रजअतु अन यकूला, अब रुजू का तरीका बतला रहे हैं। याद रखो हमारे नजदीक रुजू कौल के जरिए भी हो सकता है और फ़िअल के जरिए भी। कौल के साथ रुजू यह है कि मसलन बीवी से कहता है मैंने तुझसे रुजू कर लिया, या कहता है मैंने तुझे रख लिया, मेरा तलाक का इरादा नहीं है, या अरबी में कहता है राजा तू कि मैंने तुझसे रुजू कर लिया, तवज्जो है। और अगर बीवी मौजूद नहीं है किसी और के सामने कहता है, या बात समझ में आ गई, रुजू के अंदर बीवी का सामने मौजूद होना जरूरी नहीं है, जैसे तलाक के वक्त औरत का सामने मौजूद होना जरूरी नहीं है। एक आदमी है वो खलवत के अंदर बीवी को तलाक देता है तो तलाक वाकई हो गई भाई, बेशक उसकी बीवी यहां मौजूद नहीं है लेकिन तलाक वाकई हो गई। इसी तरह रुजू के अंदर भी बीवी का सामने मौजूद होना जरूरी नहीं है। खावन किसी और के सामने कहता है राजा तुम रती, मैंने अपनी बीवी से रुजू कर लिया, तो रुजू हो जाएगा भाई। यह तो था जुबान से रुजू भाई, जुबान से रुजू। और एक है फेल के साथ रुजू, फेल के साथ भी इंदल अहनाफ रुजू हो जाएगा जब खावन ऐसा कोई फेल करे जो बीवी के साथ खास है, बीवी के साथ जायज है और किसी के साथ जायज नहीं। मसलन खावन जो है उसके साथ सोहबत कर लेता है, तलाक देने के बाद इद्दत के अंदर खावन उसे सोहबत कर लेता है, मालूम है खावन रुजू कर रहा है, खावन इसको बीवी बनाकर रखना चाहता है, जब ही तो सोहबत कर रहा है, तवज्जो है। या खावन शहवत के साथ इसका बोसा ले लेता है या शहवत के साथ इसको छू लेता है, शहवत के साथ इसको छू लेता है, इसको हाथ लगाता है, मालूम हो वो रुजू कर रहा है, क्योंकि ये चीजें तो बीवी के अलावा और किसी औरत के साथ जायज नहीं, मालूम हो वो उसको बीवी बनाकर रखना चाहता है। या इसी तरह सिर्फ देखने से भी रुजू हो जाएगा, जैसे खावन शहवत के साथ औरत की शर्मगाह की तरफ देख ले, और यह मसला पीछे भी जिक्र हुआ था, और इसमें फर्जे दाखिल का एतबार है, शहवत के साथ फर्जे दाखिल को देख ले तो फिर रुजू होगा। बात समझ में आ गई? जहां हुरमत मुसाहरत का मसला जिक्र हुआ था वहां जिक्र था कि कोई शख्स अगर किसी औरत के फर्जे दाखिल को शहवत से देख लेगा तो हुरमत मुसाहरत साबित हो जाएगी। तो यहां पर भी खावन अगर शहवत के साथ फर्जे दाखिल को देख लेगा तो रुजू साबित हो जाएगा भाई। वजह यह कि असल में तो फर्ज दाखिल ही का नाम है, खारिज तो मीन वजह फर्ज है, मीन वजह फर्ज नहीं, तो असल तो फर्ज दाखिल का नाम है, तो फर्ज दाखिल को खावन शहवत के साथ देखेगा तो फिर रुजू साबित हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें बीवी के अलावा और किसी औरत के साथ जायज नहीं है भाई। देखिए भाई कहते हैं वर्रजअतु अन यकूला, और रुजू यह है कि खावन यूं कहे राजअतु की मैंने तुझसे रुजू कर लिया जब बीवी मौजूद है, और राजअतु मरअति या बीवी मौजूद नहीं है तो यूं कहते हैं राजअतु मरअति मैंने अपनी बीवी से रुजू कर लिया। वहादा सरीह फिर रजअति, और यह सरीह है रुजू में, यानी साफ लफ्जों में रुजू है, और अगर गोलमोल अल्फाज जिक्र करता है फिर वहां नीयत जरूरी है, वहां नीयत जरूरी है। तो कहते हैं वहादा सरीहुन फिर रजाती, और ये सरीह अल्फाज हैं रुजू में, यानी इनमें रुजू के अलावा और कोई माना नहीं है। वला खिलाफ फीही बैन अल अइम्मती, और इसमें अइम्मा के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है, सबके नजदीक बिल इत्तेफाक राजातु की या राजातु मरअती कहने से रुजू हो जाएगा। काला साहिब कुदूरी आगे फरमाते हैं औ या ताहा, या खावन बीवी से सोहबत कर ले, ये अमल के जरिए रुजू भाई, खावन बीवी से सोहबत कर ले, औ युकब्बिलहा औ यलमिसहा बिशहवतिन, या बीवी का बोसा ले ले या उसको छू ले यानी हाथ लगाए, बिशहवतिन शहवत के साथ, ये शहवत की कैद जरूरी है। औ यंजुरा इला फरजिहा बिशहवतिन, या खावन देखे उस औरत की शर्मगाह की तरफ शहवत से। वहादा इंदाना, और ये हमारे नजदीक है, यानी फेल के जरिए रुजो करना ये इंदल अहनाफ है भाई। वकाल शाफी रहमहुल्लाहु ला तसिहु रजअतु इल्ला बिल कौली, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि रुजो सही नहीं है मगर कौल के साथ ही, जुबान से ही रजअतु की कहना पड़ेगा या रजअतु इमराती कहना पड़ेगा, फेल के जरिए रुजो सही नहीं। वजह यह कि वो फरमाती है कि रुजो इब्तिदाए निकाह के दर्जे में है, जैसे निकाह करते हैं तो इब्तिदाए निकाह देखो वहां बोसा लेने से या शहवत से हाथ लगाने से निकाह नहीं होता, जुबान से कहना पड़ेगा। इब्तिदाए निकाह जैसे किसी फेल वगैरह से इब्तिदाए निकाह नहीं होती, वहां जुबान से इजाब और कबूल करना पड़ता है, यानी वहां कौल जरूरी होता है, तो रुजू के अंदर भी कौल जरूरी है, फेल के जरिए रुजू नहीं हो सकता, जैसे इब्तिदाए निकाह किसी ऐसे फेल के जरिए नहीं हो सकता भाई। तो जैसे इब्तिदाए निकाह में कौल जरूरी है, इसी तरह यहां रुजू के अंदर भी कौल जरूरी है भाई, इल्ला ये कि कोई कौल पर कादिर ही ना रहे या कादिर ही नहीं है, मसलन गूंगा है या किसी की जुबान बंद हो गई है, वो बात ही नहीं कर सकता, तो फिर इस सूरत में इशारे से भी रुजू सही हो जाएगा, वरना वरना कौल जरूरी है भाई। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमुल्ला ला तसिहु रजअतु इल्ला बिल कौली इमा अल कुदरति अलैही, और इमाम शाफी रहमुल्ला के नजदीक रुजू सही नहीं इल्ला बिल कौली मगर कौल के साथ ही, माल कुदरति अलैही कौल पर कुदरत होने के साथ। अन्न रजअतु बिमंजिलत इब्तिदा इन निकाह, इसलिए क्योंकि रुजू करना यह इब्तिदाए निकाह के दर्जे में है, और इब्तिदाए निकाह तो किसी फेल से नहीं होता बल्कि कौल से होता है, तो यहां रुजू भी कौल से होगा। तो कहते हैं लिअन्न रजअत बिमंजिलत इब्तिदा इन निकाह, इसलिए क्योंकि रुजू करना इब्तिदाए निकाह के दर्जे में है। हत्ता यहरुमु वत्उहा, यहां तक कि औरत से सोहबत भी हराम होती है भाई। हमारे नजदीक तलाक रजई के बाद भी खावन बीवी से सोहबत कर सकता है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक वती नहीं कर सकता, वती हराम हो चुकी है, तो उनके नजदीक इसीलिए ये रुजू इब्तिदाए निकाह के दर्जे में है, ये गोया फिर निकाह कर रहा है बीवी के साथ, तो तलाक रजई दी, बीवी हराम हो गई, अब वो कहते हैं सोहबत कर ही नहीं सकता, हां रुजू कर लोगे तो गोया फिर निकाह कर लिया, अब सोहबत हलाल हो जाएगी। जबकि हमारे नजदीक तो तलाक रजई से निकाह खत्म होता ही नहीं, तलाक रजई के बावजूद खावन सोहबत कर सकता है भाई, तवज्जो है, खावन अभी भी मालिक है। ये देखो ये जो बाबू रजअत आपने पढ़ा, बाबू रजअत, इससे पिछली सतर में देखें लिमा बैयन्ना अन्नहु ला युज़ील उन निकाह हत्ता यहिलुल वत्उ, हमारे नजदीक तो तलाक रजई में वती भी हलाल होती है जी। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक वती वती हराम होती है, तवज्जो भी है कि नहीं। तो कहते हैं लिअन्न रजअत बिमंजिलत इब्तिदा इन निकाह, इसलिए क्योंकि ये रुजू जो है ये इब्तिदाए निकाह के दर्जे में है। हत्ता यहरुमु वत्उहा, यहां तक कि इस औरत की वती भी हराम होती है खावन पर। वाइंदाना हुआ इस्तेदामतुन निकाही, और हमारे नजदीक जो है ये रुजू जो है इस्तेदामतुन निकाह, ये निकाह को बरकरार रखने का नाम है। अलामा बैयन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दी। वसनुकर्रिरुहु इंशा अल्लाह ताला, और अन करीब हम इसको साबित करेंगे इंशा अल्लाह ताला, यानी इस बाब के आखिर में, कि ये रुजू इस्तेदामत निकाह का नाम है, इब्तिदाए निकाह का नाम नहीं है भाई। والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة, और फेल भी कभी कभार दलील हो जाता है على الاستدامة बरकरार रखने पर, कभी कभार फेल भी बरकरार रखने पर दलील हो जाता है। कमा फी इसकात الخياري, जैसे खियार के साकित करने में, जैसे खियार के साकित करने में। आपको मैंने बतलाया था कि बाय और मुश्तरी दोनों खियारे शर्त रख सकते हैं। खियारे शर्त यह है कि बाय या मुश्तरी में से कोई एक अपने लिए इख्तियार रख लेता है बै के वक्त, कि भाई मैं आपसे यह बै कर रहा हूं लेकिन अब पता नहीं मैं इस बै में मेरा फायदा है या फायदा नहीं, मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा, मुझे तीन दिन तक इख्तियार है, मैं चाहूं तो इस बै को फसख कर सकता हूं। तो इन दोनों में से कोई एक फस्खे बैअ का इख्तियार रख लेता है, इसको क्या कहते हैं, खियारे शर्त। तो सूरत है मसला यह, एक शख्स ने अपनी बांदी को फरोख्त किया, बांदी को फरोख्त किया और खुद तीन दिन के लिए खियार रख लिया, बैअ कर ली है, बांदी बेच दी है, लेकिन बेचने वाले ने, बाय ने तीन दिन के लिए खियारे शर्त रख लिया और बांदी अभी इसी के पास है, ये तीन दिन के अंदर बैग को फसख करना चाहे तो फसख कर सकता है। दूसरे या तीसरे दिन अभी वक्त पूरा नहीं हुआ था कि इस बाए ने उस बांदी से सोहबत कर ली जी। इस बाए का बांदी से सोहबत करना बतला रहा है कि ये बैग को फसख कर रहा है, इसका ये वती करना बांदी से ये क्या बतला रहा है कि ये बैग को फसख कर रहा है। तो देखो कॉल के जरिए तो इसने बैग को फसख नहीं किया, लेकिन अपने फेल के जरिए बैग को फसख कर दिया। आप कहेंगे किस तरह बै फसख हुई? भाई देखिए ना, आप जानते हैं कि बै होते ही मुश्तरी मबिया का मालिक बन जाता है। आपकी जेब पर एक कलम लगा हुआ है और आपने मुझे कहा मैंने यह कलम आपको 100 रुपए में बेच दिया, मैंने कहा मुझे कबूल है, जैसे ही मैंने कबूल है कहा मैं साथ ही इस कलम का मालिक बन गया, कलम बेशक आपकी जेब पर है मगर मैं मालिक बन चुका हूं। तो यहां पर भी जब उस शख्स ने बै की थी तो मुश्तरी बांदी का मालिक बन गया था, बांदी का मालिक बन गया था, लिहाजा बाय के लिए वती जायज नहीं थी, लेकिन बाय का वती करना बतला रहा है कि यह उस बै को क्या कर रहा है, फसह कर रहा है, वरना तो इसके लिए वती जायज नहीं थी। वजह समझ में आ गई, मालूम हुआ बाज औकात फेल के जरिए भी मिल्कियत बरकरार रखने पर दलालत की जाती है। भाई तो यह माना है वल्फ़िअलु क़द यक़ऊ दलालतन अलल इस्तिदामती, और फेल भी कभी कभार दलील बन जाता है मिल्कियत बरकरार रखने पर, कमाफी इस्क़ातिल खियारी, जैसे अपना खियार शर्त साकित करने में, व दलालतु फ़िअलु यख़ुस्सु बिन निकाही, और यह दलालत ऐसे फेल के साथ होगी यख़ुस्सु बिन निकाही जो निकाह के साथ खास हो। खावंद रुजू करना चाहता है फेल के साथ तो ऐसा फेल होना चाहिए जो निकाह के साथ खास हो। तो कहते हैं व दलालतु फ़िअलु यख़ुस्सु बिन निकाही, और यह दलालत ऐसे फेल के जरिए होगी जो निकाह के साथ खास हो। वहां दिहिल अफ़ाइलु तख़ुस्सु बिही, और ये वाले अफ़ाल जो हैं ये निकाह के साथ खास हैं। कौन से अफ़ाल? जो हमने मतन में जिक्र किए, ये अफ़ाल निकाह ही में जायज हैं, निकाह के बगैर ये अफ़ाल जायज नहीं, यानी सोहबत करना या शहवत से बोसा लेना या शहवत से हाथ लगाना या शहवत से फर्जे दाखिल को देखना, ये चीजें निकाह में तो जायज हैं, निकाह के बगैर जायज नहीं है। तो लिहाजा ये अफाल निकाह के साथ खास हुए, खुसूसन फी हक़िल हुर्रती, खास तौर पर आजाद औरत के हक में। आजाद औरत के हक में तो ये अफाल निकाह ही के साथ खास हैं, अलबत्ता बांदी के अंदर आका के लिए भी ये अफाल जायज हैं और वहां निकाह नहीं होता, लेकिन आजाद औरत में तो यह बगैर निकाह के जायज ही नहीं है। भाई बिखिलाफिल मस्सी वन नजरी बिगैरी शहवतीन, बखिलाफ छूना और देखना बगैर शहवत के। भाई मतन के अंदर कैद आई थी कि खावन बीवी का बोसा ले ले शहवत से या हाथ लगा ले शहवत से या शहवत के साथ उसके फर्जे दाखिल को देख ले, तो उस सूरत में रुजू साबित हो जाएगा क्योंकि अफाल निकाह के साथ खास है। भाई जबकि बगैर शहवत के देखना या बगैर शहवत के छूना यह तो बगैर निकाह के भी कभी हलाल हो जाता है, बगैर निकाह के भी कभी हलाल हो जाता है। जैसे मसलन दाई जो है, यानी वो औरत जो बच्चे की पैदाइश के वक्त मौजूद हो, जैसे दाई है या इसी तरह तबीब है, तो देखो इनके लिए औरत को देखना भी हलाल हुआ और औरत को छूना भी हलाल हुआ जरूरत की वजह से। तो मालूम हुआ बगैर शहवत के देखना और बगैर शहवत के छूना यह तो निकाह के बगैर भी कभी कभार हलाल हो जाता है, तो इसलिए हमने शहवत की कैद लगाई भाई कि शहवत के साथ छुए या शहवत के साथ फर्ज दाखिल को देखे भाई। तो कहते हैं बेखिलाफ इल्मस्सी वन नजरी बिगैरी शहवतीन, बखिलाफ छूना और देखना बगैर शहवत के, लिअन्नहू कद यहिल्लु बिदूनिन निकाही, इसलिए क्योंकि ये तो कभी कभार बगैर निकाह के भी हलाल हो जाता है, कमा फिल काबिलति व तबीबी वगैरिहिमा, जैसे कि काबिला, काबिला कहते हैं दाई को, वो औरत जो बच्चे की पैदाइश के वक्त मौजूद हो उसको क्या कहते हैं, काबिला भाई। कमा फिल काबिलती, जैसे कि दाई में, व तबीबी, और तबीब में भाई कोई तबीब है डॉक्टर वगैरह, व गैरी ही मां, या इनके अलावा कोई और, मसलन कोई औरत के खिलाफ गवाही देना चाहता है किसी वजह से, किसी शख्स को काजी के पास किसी औरत के खिलाफ गवाही देना पड़ी, तो गवाहों के लिए औरत के चेहरे को देखना जायज है, क्योंकि औरत के चेहरे को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये वही औरत है जिसके खिलाफ हम गवाही दे रहे हैं। अगर औरत के चेहरे को ही नहीं देखा तो फिर इनको कैसे पता चलेगा कि ये वही औरत है या वही औरत नहीं है जिसके खिलाफ वो गवाही दे रहे हैं। तो वहां पर भी देखो, उनके लिए भी, उन गवाहों के लिए भी औरत को देखना जायज हो गया। तो मालूम हुआ बगैर शहवत के देखना तो कभी बगैर निकाह के भी जायज हो जाता है, इसलिए हमने शहवत की कैद लगाई। तो कहते हैं कमाफिल काबिलति व तबीबी वगैरी हिमा, जैसे कि दाई में और तबीब में, वगैरी हिमा और इनके अलावा में, व नजर इला गैर फर्ज कद यकउ बैनल मुसाकिनीना, साकना युसाकिनु मुसाकनतन का माना है किसी के साथ एक घर में रहना, किसी के साथ एक घर में रहना। अब साहिब हिदायत आपको बतला रहे हैं कि हमने शहवत के साथ छूने या शहवत के साथ फर्ज दाखिल को देखने की कैद लगाई, और शर्मगाह के अलावा की तरफ देखना, शर्मगाह के अलावा की तरफ देखना यानी चेहरा या हाथ या पांव की पर नजर पड़ना, यह तो एक घर में रहने वालों के दरमियान भी होता है, एक घर में रहने वालों के दरमियान भी होता है। तो खावन भी बीवी के साथ इद्दत के दौरान एक ही घर में रह रहा है, तो लिहाजा इद्दत के दौरान खावन की भी नजर पड़ सकती है बीवी पर। शर्मगाह के अलावा की तरफ देखना यह तो एक घर में रहने वालों के दरमियान भी हो सकता है कि कभी चेहरे पर या हाथ वगैरह पर नजर पड़ गई, तो खावन भी बीवी के साथ इद्दत के दौरान उसी एक घर में है, क्योंकि इद्दत के दौरान रिहाइश देना किसके जिम्मे है, खावन के जिम्मे है, तो औरत भी उसी घर में है, खावन भी उसी घर में है, तो एक घर में रहने वालों की तो एक दूसरे पर नजर पड़ती है, लिहाजा खावन की अगर औरत पर नजर पड़ती है शर्मगाह के अलावा, चाहे शहवत से नजर पड़े चाहे बगैर शहवत की, क्योंकि सिर्फ फर्ज दाखिल पर शहवत से नजर पड़ेगी तो रुजू होगा, वैसे चेहरे या हाथ या पांव पर नजर पड़ती है चाहे शहवत के साथ हो चाहे बगैर शहवत के हो, सिर्फ देखने की वजह से रुजू नहीं होगा। हां, शहवत से छुएगा या बोसा लेगा तो फिर रुजू हो जाएगा। तो खावन भी बीवी के साथ एक घर में रह रहा है, लिहाजा शर्मगाह के अलावा और जिस्म के हिस्सों पर अगर नजर पड़ती भी है तो उसकी वजह से रुजू नहीं होगा भाई, क्योंकि अगर हम इसको भी रुजू करार दे देंगे तो फिर औरत को नुकसान पहुंचेगा। किस तरह? कि खावन की नजर पड़ गई और आपने इसको रुजू करार दे दिया, और खावन तो इसे जान छुड़ाना चाहता है, तो खावन को दोबारा तलाक देना पड़ेगी, और फिर दोबारा नजर अगर पड़ गई तो फिर खावन को फिर तलाक देना पड़ेगी, तो इद्दत औरत पर लंबी हो जाएगी, और नीस फिर जब तीनों तलाकें दे देगा तो बाद में कभी तलाफी की सूरत भी न रही भाई। बात समझ में आ गई? लिहाजा इसलिए शर्मगाह के अलावा पर नजर पड़ने से रुजू नहीं होगा, क्योंकि एक घर में रह रहे हैं और एक घर में रहने वालों की तो एक दूसरे पर नजर पड़ जाती है भाई। तो कहते हैं वन नजरु इला गैरिल फर्जी, और शर्मगाह के अलावा की तरफ देखना, कद यकउ बैनल मुसाकिनीना, वो तो कभी कभार एक घर में रहने वालों के दरमियान भी वाक़े होती है, वह ज़ौजु युसाकिनुहा फिल इद्दती, और खावन भी उस औरत के साथ एक घर में रह रहा है, फिल इद्दती इद्दत के दौरान, फलौ कानत रजअतन, अगर ये शर्मगाह के अलावा की तरफ देखना इसको भी अगर रुजू कहा जाता, लतल्लक़हा, तो फिर खावंद इसको दोबारा तलाक देता, फयतूलुल इद्दतु अलैहा, तो औरत पर इद्दत लंबी हो जाती यानी उसको नुकसान होता भाई। इसलिए हमने कहा कि फर्ज दाखिल के अलावा की तरफ सिर्फ देखने से रुजू नहीं होगा, बाकी में शहवत से छूने से जो है वो रुजू होगा भाई। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, काला वो युस्तहब्बु अन युशहिदा अला रजअति शाहिदैनी, मैंने आपको बतलाया कि रुजू पर मुस्तहब है दो गवाह बना ले, रुजू पर मुस्तहब है कि दो गवाह बना ले ताकि औरत बाद में इनकार न कर सके। قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ويستحب ان يشهد على الرجعه شاهدين کے خاوند رجوع پر دو گواہ بنا لے فإن لم يشهد صحة الرجعه اگر گواہ نہ بھی بنائے پھر بھی رجوع صحیح ہے تو گواہ بنانا مستحب ہے بھائی کوئی لازم نہیں ہے وقال الشافعي رحمه الله في احد قوليه اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے دو قولوں میں سے ایک کے اندر لا یصحو کہ رجوع صحیح ہی نہیں بغیر گواہ بنائے رجوع صحیح ہی نہیں وہو قول مالک رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام مالک رحمہ اللہ کا بھی لقوله تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور تم اپنے سے دو قابل اعتماد آدمیوں کو گواہ بنا لو زوائے عدلین عدل والے عدل والے تو عادل مراد ہیں اور عادل کا کیا معنی کریں گے قابل اعتماد بھائی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو دو قابل اعتماد آدمیوں کو گواہ بنا لو معلوم ہوا گواہ بنانا لازم ہے اشہدو امر کا صیغہ آیا تو امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے اور امام مالک رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں امر آیا ہے والامر للایجاب اور امر کس لیے ہوتا ہے ایجاب کے لیے ولنا اور ہماری دلیل جو ہے اطلاق النصوص عن قید الاشہادی وہ نصوص کا مطلق ہونا ہے عن قید الاشہادی اشہاد کی قید سے ہم کہتے ہیں نصوص کے اندر نصوص کسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث کے اندر رجوع کے ساتھ اشہاد کی قید موجود نہیں رجوع کے ساتھ اشہاد گواہ بنانے کی قید نہیں ہے مثلا دیکھو یہ حاشیے میں کئی انہوں نے نصوص ذکر کی ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تم ان کو روک لو اچھے طریقے سے اور اس روکنے سے رجوع مراد ہے اس روکنے سے رجوع مراد ہے اور یہاں اشہاد کا ذکر ساتھ نہیں ہے نیز دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الطلاق مرتانی کہ طلاق دو مرتبہ ہے یعنی رجعی طلاقیں دو ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ پھر اچھے طریقے سے روکنا ہے او تَصْرِحُمْ بِإِحْسَان یا اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے دیکھو یہاں پر بھی گواہ بنانے کا ذکر نہیں ہے بھائی نیز دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ اور ان کے جو خاوند ہیں احق وہ زیادہ لائق ہیں بِرَدِّهِنَّ ان کے لوٹانے کے ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کے لوٹانے کے کہ وہ ان کو لوٹا لیں یعنی رجوع کر لیں تو یہاں بھی لوٹانے سے کیا مراد ہے رجوع اور یہاں بھی اشہاد کی قید نہیں کہ گواہ بنانا پڑیں گے بھائی اور نیز قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما ان یتراجعا کہ ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے میاں بیوی پر اگر یہ باہم رجوع کر لیں اس میں بھی دیکھو اشہاد کی قید نہیں ہے بھائی اور نیز حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کے اندر طلاق دے دی تھی تو حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت عمر کو کہا مر ابنا کا فل یراجعہا اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ اسے رجوع کر لے دیکھو یہاں بھی رجوع کا حکم ہے لیکن گواہ بنانے کا ذکر نہیں ہے تو ان تمام نصوص سے پتا چلا کہ اشہاد ضروری نہیں ہے بھائی ولنا اور ہماری دلیل جو ہے اطلاق النصوص نصوص کا مطلق ہونا ہے عن قید الاشہادی اشہاد کی قید سے ولأنه استدامۃ للنکاح اور نیز اس لیے کیونکہ یہ رجوع جو ہے یہ نکاح کو برقرار رکھنا ہے والشہادت لیست شرطا فیہ فی حالت البقائی اور گواہی یہ تو شرط نہیں ہے نکاح میں حالت بقا میں بھئی دیکھو ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے وقت دو مرد گواہ ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں تو اس شخص نے نکاح کر لیا ایک عورت سے اور دو گواہ موجود تھے نکاح ہو گیا बाद में इन दोनों गवाहों का इंतकाल हो गया तो क्या इससे निकाह पर असर पड़ेगा? नहीं, निकाह तो उसी तरह बरकरार रहेगा। मालूम हुआ इब्तेदाए निकाह के लिए इशहाद जरूरी है, गवाह बनाना जरूरी है, बकाए निकाह के लिए शहादत शर्त नहीं है। और रुजू के अंदर भी बकाए निकाह होता है। अभी तो हमने बताया रुजू किसका नाम है, बकाए निकाह का नाम है, इस्तेदामत निकाह का नाम है, निकाह को बरकरार रखना। और बकाए निकाह के अंदर तो गवाहों की शर्त नहीं होती भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु इस्तेदामतुन लिन्निकाही, और इसलिए क्योंकि रुजू जो है ये निकाह को बरकरार रखना है। वह शहादतु लैसत शर्तन फीही फी हालतिल बकाई, और शहादत ये तो शर्त नहीं है निकाह में बका की हालत में। कमा फिल फै फिल ईला, जैसे कि ईला में रुजू के अंदर। ईला भाई अभी मैंने आपको बतलाया, अगर कोई शख्स कसम उठा लेता है अपनी बीवी से सोहबत न करने की 4 माह या इससे ज्यादा की, तो इसको ईला कहते हैं, इसको ईला कहते हैं। और ईला के अंदर जरूरी है कि आप 4 माह से कबल कबल रुजू कर लें, अगर रुजू न किया तो बीवी हाथ से निकल जाएगी, तलाक बाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद बीवी को रखना है तो नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा नए महर के साथ भाई। तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, वलिल लदीन युलून मिन निसाइहिम तरबसु 4 अशहरीन, वो लोग जो अपनी बीवियों से इला कर लेते हैं उनके लिए 4 माह की मोहलत है। फइन फाऊ, अगर वो रुजू कर लें, फइन अल्लाह गफूरुर रहीम। तो इला से जो रुजू है उसको कुरान में फै के लफ्ज से जिक्र किया गया है, फइन फाऊ। तो इला के अंदर रुजू को क्या कहा गया है, फै कहा गया है। इसीलिए फुकहा भी कुरान ही का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहां पर है कमाफिल फै फिल ईलाई, ये फै उनसे क्या मुराद है, रुजू, लेकिन लफ्ज किसका इस्तेमाल कर लिया, कुरान का। कमाफिल फै फिल ईलाई, जैसे ईला के अंदर रुजू में है भाई, ईला के अंदर जब रुजू किया जाए तो उसमें तो बिल इत्तेफाक गवाह बनाने की शर्त नहीं है, और वहां भी रुजू है बकाए निकाह है, तो जैसे वहां बकाए निकाह है और तो वहां पर गवाहों की शर्त नहीं, तो तलाक रजई के बाद रुजू के अंदर भी गवाहों की शर्त नहीं होगी। इल्ला अन्नहा तुस्तहब्बु लिज़ियादति लिहतियाति, मगर यह कि ये गवाह बनाना मुस्तहब होगा, लिज़ियादति लिहतियाति, ज्यादा एहतियात के तौर पर। याद रखो साहिब हिदायत ने यह नहीं फरमाया कि इशहाद मुस्तहब होगा लिल एहतियाती, एहतियात की वजह से, बतौर एहतियात के नहीं, बल्कि फरमाया लि ज्यादती लिल एहतियाती, ज्यादा एहतियात के तौर पर। तो साहिब हिदाया ने यहां एहतियात के साथ ज्यादत की कैद लगा दी भाई, कि ये जो हमने हुक्म दिया है ये ज्यादा एहतियात के तौर पर है। वजह यह कि अगर साहिब हिदाया ये कहते कि यह मुस्तहब है एहतियात के तौर पर, ज्यादा की कैद न लगाते कि यह मुस्तहब है एहतियात के तौर पर, हमने इस इशहाद को हमने मुस्तहब करार दिया है, तो फिर कोई मोतरिज एतराज कर सकता था कि भाई आपने हमें पीछे कितने ही मसाइल बताए जहां एहतियात की वजह से आपने वजूब का हुक्म दिया था कि ऐसा करना वाजिब है, जरूरी है, और बतौर एहतियात के हमने यह हुक्म दिया है। तो अगर साहिब हिदाया यहां भी एहतियात कह देते तो मोतरिज एतराज कर सकता था कि एहतियात के तौर पर भी तो बाज़ औक़ात चीज को वाजिब करार दे दिया जाता है, लिहाजा आपको इशहाद को भी वाजिब करार देना चाहिए, क्योंकि एहतियात की वजह से भी बाज़ औक़ात चीजों को वाजिब करार दिया जाता है, और आप भी एहतियात की बात कर रहे हैं तो एहतियात के तौर पर इसको भी आप वाजिब करार दे देते। तो साहिब हिदाया ने एहतियात के साथ ज्यादत का लफ्ज बढ़ा दिया कि हमने ये जो गवाही को मुस्तहब करार दिया है ये ज्यादा एहतियात के तौर पर है। तो एहतियात के तौर पर तो कोई चीज वाजिब हो जाती है, लेकिन ज्यादा एहतियात के तौर पर तो किसी चीज को वाजिब करार नहीं दिया जाता भाई। तो इसलिए साहिब हिदाया ने यहां लि ज्यादती लि एहतियात का लफ्ज जिक्र किया, यानी ज्यादत के लफ्ज को बढ़ा दिया भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं इल्ला अन्नहा तुस्तहब्बु लि ज्यादती लि एहतियाती, मगर यह कि गवाह बनाना मुस्तहब है ज्यादा एहतियात के लिए। कैला यजरिया तनाकुरु फीहा, तनाकुर कहते हैं बाहम इनकार, बाब तफाउल है जो जानिबैन से फेल चाहता है। तो कैला यजरिया तनाकुरु फीहा, ताकि कहीं बाहम इनकार जारी ना हो रुजू में, खावंद या बीवी में से कोई इनकार ना कर दे, भाई खावंद या बीवी में से कोई इनकार ना कर दे तो इसलिए गवाह बनाना मुस्तहब है ताकि कोई बाद में इनकार ना कर सके। दोबारा तर्जमा देख लीजिए, इल्ला नहत मुस्तहब ज्यादती लेहतियाती, मगर यह कि इशहाद जो है मुस्तहब है ज्यादा एहतियात के लिए, कैला यजरिया तनाकुरु फीहा, ताकि कहीं इन दोनों के दरमियान बाहमी इनकार जारी ना हो रुजू में। वमा तलाहु महमूलुन अलैही, और वो आयत जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने तिलावत की, महमूलुन अलैही, वो भी इसी पर महमूल है, यानी उसके अंदर भी जो अशहीदु अमर आया है वो इस्तेहबाब के लिए है, वजूब के लिए नहीं। तो कहते हैं वमा तलाहु महमूलुन अलैही, और वो आयत जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने तिलावत की, महमूलुन अलैही, वो भी इसी इस्तेहबाब पर महमूल है। अला तरा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु क़रनहा बिल मुफारकती, कि अल्लाह ताला ने रुजू के साथ मिलाया है मुफारकत को। वह हुआ फीहा मुस्तहबुन, और उसके अंदर इशहाद मुस्तहब है। भाई कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, फईदा बलगना अजलहुन्ना फअमसिकुहुन्ना बिमारूफिन औ फारिकुहुन्ना बिमारूफिन व अशहिदु ज़वै अदलिन। तवज्जो है, पहले फअमसिकुहुन्ना बिमारूफिन इमसाक का जिक्र है, औ फारिकुहुन्ना बिमारूफिन फिर मुफारकत का जिक्र है, और मुफारकत के बाद वह अशहिदु ज़वै अदलिन मिनकुम इशहाद का जिक्र है। तो इशहाद तो मिला हुआ है मुफारकत के साथ, तवज्जो है, और मुफारकत के अंदर तो बिल इत्तेफाक इशहाद मुस्तहब है, वाजिब नहीं। खावन अगर बीवी से जुदाई इख्तियार करता है, रुजू नहीं करता, तो इस पर गवाह बनाने की जरूरत नहीं आई, उसमें तो गवाह मुस्तहब है भाई। तो जब मुफारकत जिसके साथ इशहाद मिला हुआ है, जब उस मुफारकत के अंदर इशहाद मुस्तहब है, तो उससे माकबल जो रुजू का जिक्र हो रहा है, इमसाक का जिक्र हो रहा है, उसमें बतरीके औला इशहाद मुस्तहब होगा। अल्लाह तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु करनहा बिल मुफारकती, कि अल्लाह ताला ने रजअत को मिलाया है मुफारकत के साथ, वह हुआ फीहा मुस्तहबुन, और इशहाद उसके अंदर तो मुस्तहब है। वही उस्तहब अन युअलिमहा, और मुस्तहब है कि खावन उस औरत को भी खबर दे दे। अगर खावन ने औरत की गैर मौजूदगी में रुजू किया है तो मुस्तहब यह है कि औरत को भी इत्तला दे दे कि मैंने रुजू कर लिया है, ताकि कहीं ऐसा ना हो औरत यह समझे कि खावन ने तो रुजू नहीं किया, मेरी तो इद्दत गुजर गई, फिर वो कहीं और निकाह कर ले और फिर वो दूसरा खावन भी इससे सोहबत करे, तो यह तो औरत मासियत गुनाह में मुबतला हो गई। किसमें? गुनाह में मुबतला हो गई, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरा खावन तो मुझसे रुजू कर चुका है, मेरा तो अगला निकाह जायज ही नहीं। भाई बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं वही उस्तहब अन युअलिमहा, और खावन के लिए मुस्तहब है कि औरत को भी खबर दे दे, कैला तका फिल मासियती, ताकि कहीं जो है औरत गुनाह में ना वाकई हो जाए। सवाल, जब औरत को एक मामले की खबर ही नहीं है, खावन ने रुजू कर लिया लेकिन उस बिचारी को तो नहीं पता कि खावन रुजू कर चुका है, और फिर वो आगे निकाह कर लेती है और दूसरा खावन उसके साथ सोहबत करता है, तो औरत को तो मसले का पता ही नहीं है, तो वो गुनाहगार कैसे है इस निकाह के अंदर? भाई एतराज समझ में आ रहा है? तो फिर साहिब हिदायत के कहने का क्या मतलब है, कैला तकाफिल मासियत, ताकि कहीं वो गुनाह में मुबतला ना हो जाए? तो शारहीन जवाब देते हैं कि गुनाह गुनाह है चाहे इलम हो या इलम ना हो। हां, बाज़ औकात इलम ना हो तो फिर सजा नहीं होगी। जैसे ये औरत है, इसको पता ही नहीं कि मेरा खावन रुजू कर चुका है, ये आगे निकाह कर लेती है और दूसरा खावन इसे सोहबत करता है, तो ये सारा गुना है। हां, वो अलग बात है, इस गुना की वजह से आखिरत में इस औरत की पकड़ नहीं होगी, इसको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बिचारी को पता नहीं था। तो आदम इलम की वजह से सजा तो नहीं मिलेगी, लेकिन बहरहाल मासियत तो मासियत ही है भाई, तो वो मासियत ही रहेगी भाई। तो जब खावन इस औरत को खबर नहीं देगा तो ये आगे निकाह करेगी और दूसरा खावन इसे सोहबत भी करेगा, तो ये मासियत में मुबतला हो जाएगी। ये माना है भाई, बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं वही मुस्तहब अन युअलिमहा, और खावन के लिए मुस्तहब है कि उस औरत को भी रुजू की खबर दे दे, कैला तकाफिल मासियति, ताकि कहीं वो गुनाह में मुबतला न हो जाए। आगे देखिए वह ईदन कजतिल इद्दत फकाल कुंतु राजातुहा फिल इद्दति, सूरत मसला ये, इद्दत गुजर गई, बाद में खावंद और बीबी का इख्तिलाफ हुआ, खावंद कहता है मैंने इद्दत के अंदर रुजू कर लिया था, और औरत कहती है नहीं इसने रुजू नहीं किया था। तो याद रखो फिर औरत का कौल मोतबर है, औरत का कौल मोतबर है, और अगर औरत ने खावंद की तस्दीक कर दी तो फिर इस सूरत में रुजू सही हो जाएगा। तो कहते हैं वह ईदन कजतिल इद्दत, और जब इद्दत गुजर जाए, फकाल, फिर खावंद कहता है कुंतु राजातुहा फिल इद्दती, कि मैंने इस औरत से इद्दत में रुजू कर लिया था, फसद्दकत, तो औरत भी उसकी तस्दीक कर देती है, फहिया रजअतुन, तो ये रुजू है। वह इन कज़बत फल कौल कौलुहा, और अगर औरत ने खावंद को झुटला दिया तो औरत का कौल मोतबर है, लिअन्नहु अखबर अम्मा ला यमलिकु इंशाअहु फिल हाल फकान मुत्तहमन। देखो इद्दत गुजर चुकी है और इद्दत के बाद खावंद कहता है मैंने रुजू कर लिया था इद्दत के अंदर, और औरत उसको झुटला देती है, तो इस सूरत में औरत का कौल मोतबर है। भाई औरत का कौल क्यों मोतबर है, खावंद का कौल क्यों नहीं मोतबर? कहते हैं वजह यह कि खावंद एक ऐसी बात जिक्र कर रहा है जिस पर फिलहाल वो कादिर नहीं, अब तो इद्दत गुजर चुकी है, इस वक्त तो खावंद रुजू नहीं कर सकता, इस वक्त तो खावंद रुजू को वजूद नहीं दे सकता। जब एक चीज को यह वजूद नहीं दे सकता और फिर उसको जिक्र कर रहा है तो दिलों में बदगुमानी आती है कि यह इस वक्त रुजू को वजूद नहीं दे सकता, इस वक्त यह रुजू नहीं कर सकता, जब यह रुजू नहीं कर सकता तो अब माजी के एतबार से वैसी झूठी खबर दे रहा है कि मैंने रुजू कर लिया था, इस वक्त तो कर नहीं सकते, अब माजी की खबर देना शुरू कर दी कि मैंने माजी में रुजू कर लिया था, तो दिलों में बदगुमानी आती है, इसलिए खावन का कौल मोतबर नहीं बल्कि औरत का कौल मोतबर है। यह माना है लिअन्नहु अखबरा अम्मा ला यमलिकु इंशाअहु फिल हाली, इसलिए क्योंकि खावन ने खबर दी है अम्मा उस चीज की यानी उस रुजू की, ला यमलिकु इंशाअहु कि खावन उसको वजूद देने का मालिक नहीं है, फिल हाली फिल हाल, फकान मुत्तहमन, तो खावन क्या हुआ, मुत्तहम हुआ, यानी उसके बारे में दिलों में बदगुमानी आती है। इल्ला अन्ना बितस्दीक तरतफ़िउ तोहमतु, मगर यह कि औरत के तस्दीक कर देने से वह तोहमत उठ जाती है, औरत तस्दीक कर दे तो तोहमत खत्म हो गई, रुजू साबित हो जाएगा। वला यमीन अलैहा इंद अबी हनीफत रहिमहुल्ला, और औरत पर इस मामले के अंदर कसम भी नहीं है, औरत पर इस मामले में कसम भी नहीं है। याद रखो ये साहिब हिदाया भी आगे जिक्र करेंगे, पीछे भी साहिब हिदाया ने इसी तरह जिक्र फरमाया था, छह मसले ऐसे हैं कि जिनके अंदर इमाम साहिब फरमाते हैं कि इनकार करने वाले पर कसम नहीं है। भाई कसम किस चीज पर खाई जाती है, इनकार पर, इस बात के लिए बयना चाहिए। तो इमाम साहब फरमाते हैं छह चीजें ऐसी हैं कि जिनमें इनकार करने वाले के जिम्मे कसम भी नहीं है, वो सिर्फ आम लफ्जों में सिर्फ रद्द कर दे तो काफी है, कसम खाने की हाजत नहीं है। और यह जिक्र किया था पीछे भी इसी तरह साहिब हिदाया ने, मुख्तसर लफ्जों में बस इशारा ही किया था, वो जहां जिक्र आया था सगीर और सगीरा का निकाह, बाब उन फिल औलिया इवल अकफा के अंदर, भाई सगीर और सगीरा के निकाह की बात आई थी कि वली उनका निकाह करवा सकता है, तो वहां साहिब हिदाया ने बताया था कि छह चीजें जो हैं उनमें कसम तलब करने के मामले में इख्तिलाफ है, और वो छह चीजें वो कौन सी थी, वो वहीं हाशिए में दी हुई थी, एक निकाह है, एक रजअत है यानी रुजू करना, और एक फैफिल ईला है, ईला के अंदर रुजू करना, इसी तरह वर्रिक और गुलामी है, वल इस्तीलाद और उम्मे वलद होना, वन नसब और नसब, ये छह चीजें हैं, इनमें अगर कोई इनकार कर रहा है, एक दावा कर रहा है और दूसरा इनकार कर रहा है, तो मुनकिर पर कसम भी नहीं है। भाई तो कहते हैं वला यमीन अलैहा इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, और इस औरत पर कसम भी नहीं है इमाम साहिब के नजदीक। वही अम्मा सलातुल इस्तिहलाफ फिल अशिया इस सित्तती, और ये वो छह चीजों के अंदर कसम तलब करने का मसला है। वक़द मर रफी किताब इन निकाह, और तहकीक ये बात किताब उन निकाह में गुजर चुकी है। भाई इमाम साहब के नजदीक इस मसले के अंदर औरत पर कसम भी नहीं है, लेकिन याद रखो साहिबैन के नजदीक इन मसाइल के अंदर भी मुनकिर पर कसम आएगी भाई, और फतवा साहिबैन के कौल पर है भाई। तो लिहाजा यहां पर भी साहिबैन के नजदीक औरत से कसम ली जाएगी और फिर ही औरत का कौल कबूल किया जाएगा भाई। आगे देखिए वैदा काल अज़ौज कद राजातु की फकालत मुजीबतन लहू कदिन कजत इद्दती लम तसिह हर्रजातु इंदा अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। जी फुकहा पर अल्लाह की करोड़हा रहमतें हों भाई, एक एक मसले की सूरत जिक्र फरमा दी। अब अगला मसला सुनो जरा, सूरत मसला ये, खावन ने बीवी से कहा कद राजातु की मैंने रुजू कर लिया, बीवी फौरन बोली मेरी इद्दत तो गुजर चुकी है। इधर खावन ने कहा, इधर बीवी ने कहा, दरमियान में एक लम्हे का भी वक्फा नहीं है जी। खावन ने कहा कद राजातु की मैंने तुझसे रुजू किया, बीवी फौरन बोली, बिल्कुल मुत्तसिल बोली, एक लम्हा भी बीच में नहीं रुकी। इधर खावन की बात पूरी हो रही थी, इधर बीवी की बात शुरू हो रही थी। खावन कहते हैं मैंने रुजू कर लिया, वो फौरन कहती है मेरी तो इद्दत गुजर चुकी। तो इमाम साहब फरमाते हैं रुजू सही नहीं, रुजो सही नहीं, जबकि साहिबैन फरमाते हैं रुजो सही है। भाई रुजो कैसे सही है? साहिबैन फरमाते हैं देखो इद्दत के गुजरने का पता हमें तभी चलेगा जब बीवी खबर देगी, और बीवी ने खबर बाद में दी है और खावन ने रुजू पहले किया है, मालूम है इद्दत के अंदर ही खावन रुजू कर चुका है, और जब औरत ने इद्दत के गुजरने की खबर दी तो उससे तो खावन ने पहले रुजू कर लिया था। वैसे तो हमें इद्दत के गुजरने का पता नहीं चलेगा, किससे पता चलेगा? औरत के खबर देने से, और औरत खावन के रुजू के बाद खबर दे रही है, मालूम है इद्दत बाद में खत्म हुई है और खावन का कौल पहले आया है। देखिए भाई फिर आगे इमाम साहब की दलील भी जिक्र करेंगे। वह इदा काल अज़ौज, और जिस वक्त खावन ने बीवी से कहा कद राजातु की मैंने तहकीक तुझसे रुजू कर लिया, फकालत मुजीबतन लहू, तो बीवी ने फौरन उसको जवाब देते हुए कहा, यह याद रखना बीवी ने साथ मिलाकर कहा है, दरमियान में वक्फा नहीं, अगर कुछ देर सुकूत रहा फिर बीवी ने कहा फिर तो बिल इत्तेफाक रुजू हो जाएगा भाई। तो फकालत मुजीबतन लहू, तो औरत ने उसको जवाब देते हुए कहा कदीन कजत इद्दती के तहकीक मेरी इद्दत तो गुजर चुकी है, लम तसिह हर्रजा तो इंदा अबी हनीफा तरहमल्ला, तो इमाम साहब के नजदीक रुजू सही नहीं है। वकाला तसिह, और साहिबैन फरमाते हैं रुजू सही है, लिअन्नहा सादफतिल इद्दता, इसलिए क्योंकि रुजू ने मुलाकात कर ली। सादफा युसादिफु का क्या माना? मुलाकात करना। लिअन्नहा सादफतिल इद्दता, इसलिए क्योंकि रुजू ने इद्दत के साथ मुलाकात कर ली। औरत ने जब खबर दी वो बाद में दी और खावंद ने पहले रुजू कर लिया। औरत की इद्दत के गुजरने का पता हमें कैसे चलेगा? वो खबर देगी, और खबर तो वो बाद में दे रही है, खावंद तो उससे पहले रुजू कर रहा है, तो रुजू ने किससे मुलाकात कर ली? इद्दत से, तो लिहाजा रुजू हो गया। यह माना है लिअन्नहा सादफतिल इद्दता, इसलिए क्योंकि रुजू ने इद्दत के साथ मुलाकात कर ली। इज हिया बाकियतुन जाहिरन इला अन तुखबिरा, इसलिए क्योंकि जाहिर यही है कि इद्दत बाकी है, इला अन तुखबिरा, यहां तक कि औरत खबर दे दे उसके गुजरने की। वक़द सबकत हुर्रजअतु, और तहकीक वो खबर देने पर तो रुजू मुकद्दम हो गया, रुजू पहले हो गया। वलिहादा लव काल लहा तल्लक्तु की, और इसीलिए अगर खावन ने बीवी से कहा तल्लक्तु की, दूसरी सूरत साहिबैन इसको कयास करते हैं तलाक पर, इस रुजू को किस पर कयास करते हैं? तलाक पर। आप जानते हैं कि इद्दत के अंदर भी खावन तलाक दे सकता है, खावन ने बीवी को तलाक दे दी है, अब औरत इद्दत गुजार रही है, इद्दत के अंदर भी खावन और तलाकें देगा, वो वाकई होती चली जाएंगी, तवज्जो है? तो अब सूरत मसला यह, खावन ने एक तलाक दे दिया, औरत इद्दत गुजार रही है, अब इद्दत के आखिरी दिनों में खावन बीवी को कहता है कि मैंने तुझे तलाक दे दी, औरत साथ ही मिलाकर कहती है मेरी तो इद्दत गुजर चुकी। इधर खावन के लफ्ज खत्म हो रहे हैं, इधर औरत के लफ्ज शुरू हो रहे हैं, दरमियान में वक्फा नहीं। तो खावंद ने कहा मैंने तुझे तलाक दे दी, साथ ही औरत कहती है मेरी तो इद्दत गुजर गई। तो यहां इस सूरत में याद रखो बिल इतफाक तलाक वाके हो जाएगी, बिल इतफाक तलाक वाके हो जाएगी। क्यों वाके हो जाएगी? क्योंकि जब औरत ने खबर दी है तब इद्दत खत्म हुई है, और खावंद ने तो औरत की खबर देने से पहले तलाक दे दी है। तो साहिबैन फरमाते हैं जैसे औरत की खबर देने से पहले तलाक सही है, इसी तरह रुजू भी सही है। भाई तवज्जो है, जैसे रुजू इद्दत के बाद नहीं हो सकता, इसी तरह तलाक भी इद्दत के बाद नहीं हो सकती। तो जब तलाक सही है तो रुजू भी सही होगा। बात समझ में आ गई। वलिहादा लौकाल अल्लाह तल्लक तुकी, और इसी वजह से खावन ने अगर बीवी से कहा तल्लक तुकी मैंने तुझे तलाक दे दी, फकालत मुजी बतन लहू कदिन कजत इद्दती, औरत ने उसको जवाब देते हुए कहा कि तहकीक मेरी इद्दत गुजर चुकी है, यकउद तलाक तो तलाक वाक हो जाएगी। वली अबी हनीफत रहमहुल्ला, इमाम साहब की दलील ये है। साहिबैन की क्या दलील थी? कि जब औरत ने खबर दी है तब इद्दत खत्म हुई है, तो खावंद का कौल इद्दत के अंदर आ गया, और इद्दत के अंदर तो रुजू हो सकता है। इमाम साहब फरमाते हैं कि औरत जिस वक्त खबर दे रही है मालूम है इद्दत इससे पहले गुजरी है, इद्दत गुजरने के बाद खबर वो दे रही है, तवज्जो है, तो इद्दत पहले खत्म हो चुकी है। पता नहीं कल खत्म हुई है, परसों हुई है, तरसों हुई है, इद्दत खत्म हो चुकी है। लेकिन सबसे करीब वक्त औरत के कौल से पहले का है। हम ये नहीं कहते कल खत्म हुई है या परसों खत्म हुई है, हम कहते हैं जिस वक्त औरत ने इत्तला दी है उससे पहले खत्म हुई है, ऐन उससे पहले इद्दत खत्म हुई और औरत ने फौरन क्या किया, इत्तला दे दी। और ऐन जिस वक्त इद्दत खत्म हो रही है उसी वक्त खावंद अंति तालिकुन भी कह रहा है। तो खावंद के अंति तालिकुन ने इद्दत से मुलाकात नहीं की बल्कि इनकिज़ाए इद्दत से मुलाकात की है। साहिबैन तो क्या कहते थे, खावंद का कौल किस में आ गया, इद्दत के अंदर आ गया। इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, औरत जब खबर दे रही है तो इद्दत पहले खत्म हो चुकी है, और सबसे करीब वक्त वही है जो इसके साथ मुत्तसिल जिसमें खावंद कॉल कर रहा है। मालूम है जिस वक्त खावंद कॉल कर रहा है ऐन उस वक्त इद्दत खत्म हो रही है। तो खावंद के कॉल ने इद्दत से मुलाकात की है या इनकिज़ाए इद्दत से मुलाकात की है? इनकिज़ाए इद्दत से, इद्दत के खत्म होने के साथ मुलाकात की है। तो रुजू इद्दत के अंदर हो सकता है, खत्म इद्दत के मौका पर रुजू नहीं हो सकता, लिहाजा रुजू सही नहीं है। भाई वली अबी हनीफत रहमहुल्लाह, और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्हा सादफत हालत अल इनकिज़ाई, के रुजू ने मुलाकात की है इनकिज़ाए इद्दत की हालत से, इद्दत के गुजरने की हालत से, लिअन्नहा अमीनतुन फिल इखबार अनिल इनकिज़ाई, इसलिए क्योंकि औरत जो है अमानतदार है इद्दत के गुजरने की खबर देने में। जब वो कह रही है इद्दत गुजर गई, मालूम हुआ इस बोलने से पहले क्या हुई है, इद्दत खत्म हो चुकी है, तो उसकी बात मानी जाएगी। भाई तो कहते हैं लिअन्नहा अमीनतुन फिल इखबार अनिल इनकिज़ाई, इसलिए क्योंकि औरत अमानतदार है इद्दत के गुजरने की खबर देने में। फ़ाइज़ा अखबारत, जब औरत ने खबर दे दी इद्दत के गुजरने की, दल्ला ज़ालिका अला सबक़िल इनकिज़ाई, इस बात ने दलालत कर दी कि इद्दत का गुजरना पहले हो चुका है, खबर उसके बाद दे रही है। व अक्रबू अहवाली हालु कौली ज़ौजी, और सबसे करीबी हालत इसके वो खावन के कौल की हालत है, यानी जिस वक्त खावन कॉल कर रहा है अनकदरा जातु की कह रहा है ऐन उसी वक्त इद्दत भी खत्म हो रही है। सबसे करीब यही है, सबसे करीब सूरत यही है। भाई वह अकरबु अहवाली, और इद्दत के गुजरने की सबसे करीबी हालत जो है हालु कौली ज़ौजी, वो खावन के कॉल की हालत है। वह मसअलतु तलाक अलल खिलाफ, अच्छा भाई साहिबैन ने रुजू को कियास किया था तलाक पर कि इस हालत में तलाक दे तो तलाक वाके हो जाती है, तो रुजू इस हालत में करे तो वो भी वाके होना चाहिए। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं कि तलाक के मसले में भी इख्तिलाफ है, हमें ये बात आपकी तस्लीम ही नहीं है कि ये मसला इत्तेफाकी है। साहिबैन ने तो कियास किया था रुजू को किस पर, तलाक पर, कि तलाक में तो बिल इत्तेफाक तलाक वाके हो जाती है। कहते हैं नहीं, तलाक में भी इसी तरह इमाम साहब इख्तिलाफ करते हैं कि तलाक ने भी इद्दत से मुलाकात नहीं की बल्कि इनकिज़ाए इद्दत से मुलाकात की है, लिहाजा तलाक भी वाके नहीं होगी। तलाक भी वाकई नहीं होगी। तो कहते हैं वह मसअलतु तलाक अलल खिलाफी, और तलाक का मसला भी इसी इख्तिलाफ पर है। वलौ कानत अलल इत्तिफाकी, और अगर वो इत्तिफाक पर हो, भाई अगर हम आपकी बात तस्लीम भी कर लें कि तलाक का मसला इत्तिफाकी है, उसमें इमाम साहिब भी फरमाते हैं कि तलाक हो जाएगी, तो उसकी वजह आप जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वलौ कानत अलल इत्तिफाकी, और अगर तलाक का मसला इत्तिफाक पर है, फतलाकु यकउ बिकरारिही बादल इंकिजाई वल मुराजातु ला यसबुतु बिही। कहते हैं तलाक बाद में भी तलाक का इकरार करेगा तो तलाक वाकई हो जाएगी, इद्दत के गुजरने के बाद भी तलाक का इकरार करेगा तो तलाक साबित हो जाएगी, लेकिन इद्दत के गुजरने के बाद रुजू का इकरार करेगा तो रुजू साबित नहीं होगा। तलाक साबित हो जाएगी, रुजू साबित नहीं। वजह यह कि तलाक के अंदर खावंद का नुकसान है। खावंद इद्दत के गुजरने के बाद क्या कहता है, मैंने इसको एक और तलाक भी दी थी, मैंने इसको एक और तलाक भी दे दी थी इद्दत में, तो इसमें खावंद का फायदा है या नुकसान है? इसमें खावंद का नुकसान है। लिहाजा तलाक के मसले में तो इद्दत के बाद भी खावंद इकरार करे तो उसके कौल कबूल कर लिया जाता है, लेकिन रुजू के अंदर तो खावंद का फायदा है, बीवी हाथ में रहेगी, तवज्जो है। लिहाजा इद्दत के गुजरने के बाद रुजू के बारे में खावंद इकरार करता है कि मैंने बीवी से रुजू कर लिया था, तो वहां खावन की बात कबूल नहीं की जाती, क्योंकि दिलों में बदगुमानी आती है, भाई देखो ना इद्दत गुजर गई। पिछला मसला जिक्र हुआ था कि इद्दत के गुजरने के बाद खावन कह रहे मैंने रुजू कर लिया था, अगर बीवी तस्दीक कर दे खावन की तो रुजू है, बीवी तकजीब करे तो रुजू नहीं है, औरत का कौल मोतबर है। क्यों? क्योंकि इद्दत गुजर चुकी है, खावन इस वक्त रुजू को वजूद नहीं दे सकता, रुजू इस वक्त तो कर नहीं सकता, तो वो इसलिए माजी की खबर दे रहा है, दिलों में बदगुमानी आती है, झूठ बोल रहा है अपने नफे की खातिर। तो तलाक में तो खावंद का नुकसान है और इद्दत के अंदर खावंद का फायदा है, लिहाजा इद्दत के गुजरने के बाद खावंद अगर तलाक के बारे में इकरार करे कि मैंने एक और तलाक भी इद्दत के अंदर बीवी को दी थी, तो उसके इकरार को तो कबूल कर लिया जाएगा तलाक के बारे में, लेकिन इद्दत के अंदर खावंद के इकरार को कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें उसका फायदा है। तो कहते हैं वलौ कानत अलल इत्तिफाकी, और अगर यह तलाक का मसला इत्तिफाक पर हो, यानी इसमें इमाम साहब का कौल भी यही हो जो साहिबैन ने जिक्र किया कि तलाक वाकई हो जाएगी, तो कहते हैं इसलिए क्योंकि फतलाक यकाउ बिकरार ही बादल इंकजाई, इसलिए क्योंकि तलाक जो है वह वाकई हो जाती है इद्दत के गुजरने के बाद भी खावन के इकरार करने से, वल मुराजातु ला यसबुतु बिही, और रुजू करना जो है वो खावन के इकरार से साबित नहीं होता इद्दत के गुजरने के बाद। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।